धन्यवाद भाई ओरमैन, ठीक है फिर से इस प्रातः आराधनालय में आकर बहुत अच्छा है और इस बार परमेश्वर का ये महान लेखों के साथ संगति करना। और अब हम कभी भी आराधनालय के आसपास जल्दबाजी में नहीं होते, आप जानते हैं हम अपना समय लेते हैं और कभी कभी जो लोग खड़े रहते हैं उनके लिए थका देने वाला होता है और जैसे कि वे कर सकते हैं या संभवतः वे कर सकते हैं उस समय हट जाते हैं और देते हैं। यदि कोई बालक और पास आना चाहता है मैं सोचता हूं कि हम कुछ औरों को बैठा सकते हैं और यहां मंच पर दो अतिरिक्त बैठने के लिए तीन लगभग चार यहां पर हैं। यदि पीछे से कोई आकर यहां आराम से होना चाहता है या कोई थोड़ा पीछे है, यहां आराधनालय में आने का पहला अवसर है और कुछ बड़े यहां आकर बैठाना चाहते हैं तो उन्हें यहां पाकर हमें प्रसन्नता होगी, इससे किसी और को बैठने का स्थान मिलेगा। कुछ डीकन या कुछ सेवक या जो भी हो वो यहाँ आएगा और किसी और को बैठने का स्थान देने का अवसर होगा जो खड़े हैं, और कुछ लोग अब भी आ रहे हैं, पीछे आने का यत्न कर रहे हैं, वे देखते हैं कि गलियारे भर गए हैं और वे चले जाते हैं और रह जाते हैं। मैं विश्वास करता हूँ यहाँ कुछ अतिरिक्त बैठने की जगह है सामने, युवती क्या ये ठीक है? ठीक, यहाँ सामने एक स्थान है सामने यहाँ, और मैं देखता हूँ कि वुड खड़े हो रहे हैं, यहाँ दो और हैं, इस ओर थोड़ा सा और बढ़ जाएं, यहाँ ठीक सामने दो और हैं। यदि कोई सामने आना चाहता है तो यहाँ एक दो तीन तीन बैठने के स्थान यहाँ पर हैं, मंच पर संभवतः चार, और आप यहाँ आएंगे तो पीछे कुछ स्थान खाली हो जाएंगे क्योंकि कुछ लोग सेवा आरंभ होने के बाद आते हैं और वे चारों ओर देखेंगे वहाँ पीछे दरवाजे पर और फिर वापस चले जाते हैं और वे सेवाओं में चूक जाते हैं। यहाँ पर एक है, एक यहाँ बीच में, हाँ एक दो तीन चार पाँच, अब यहाँ पाँच स्थान खाली हो गए हैं यहाँ सामने, आप यहाँ ऊपर आ जाएं, स्वयं को खुला घर जैसा अनुभव करें। भाई जॉर्ज, परमेश्वर आपको आशीष दे, आज प्रातः फिर से आपको देखकर प्रसन्न हैं, जबकि ये बहुत ही अच्छा है। बहन आप छोटी महिला, यदि वो उसके लिए ठीक वहाँ पीछे की ओर है, ठीक वहाँ ये ठीक पीछे जाएं जहाँ वो व्यक्ति खड़ा है, वहाँ ठीक उधर, ओ ये अच्छा है, सब आराम से बैठे हैं और वे अच्छा अनुभव कर रहे हैं, वे आपके समान अनुभव कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि अधिक सुविधाजनक नहीं है, परंतु हम चाहते हैं कि जितना हो सकता है आपको आराम दें। अब हम आने वाली सभाओं की प्रतीक्षा कर रहे हैं, भविष्य में महान आशीषों की आशा कर रहे हैं, भविष्यवाणी कि ये आने वाली सभा। अब इस प्रातः मैंने लोगों को बताया कि मैं बीमारों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं और मेरे लिए ये अंतिम अवसर होगा कि मैं आराधनालय में सभा के पश्चात प्रार्थना करूंगा। सभाओं के चलते समय में हम इसे भविष्य सूचक पंक्ति में रखना चाहते हैं, यदि हम इसे रख सके। तब इसके बाद मैं सोचता हूं संभव है बड़े दिन से पहले मैं कुछ एक अलग रात्रियों की सभा डेनियल पर लेना चाहता हूं या आराधनालय में, क्योंकि हो सकता है वर्ष के पहले में मैं फिर छोड़ दूंगा और मैं जानता हूं कि हमारे पास अधिक समय नहीं बचा है। इसलिए अब यदि कोई आ रहा है और मोटल में अपना आरक्षण कराना चाहता है और आदि आदि, तो हमारे पास इसका प्रबंध है, इसलिए हम आरक्षण पा सकते हैं। और श्री मॉरिस, जो कि गले के कैंसर से चंगे हुए हैं, वो एक कलाबाज थे, यहाँ नगर में मेरे मित्र डॉक्टर अदेर के परिवार में ब्याह हुआ और उन्होंने उनकी कैंसर की शल्य चिकित्सा की और वो मर रहा था, और 6-7 वर्षों पहले प्रभु ने उनके घर पहुंचने में मेरी अगुवाई की जहां वे अपनी बहन के घर में पड़े हुए थे, गले के कैंसर से मर रहे थे, और उस दिन मैं उनके पास यहां नाई की दुकान में आया, गवाही दी, कहा यहां तक कि मैं सटक भी नहीं सकता था, और कहा मेरे लिए प्रार्थना हुई और 5 मिनट में मैंने अपना दोपहर का भोजन खाया, कहा तब से उसका एक अंश भी नहीं है। वो वेफेयर मोटल चलाते हैं और उनसे कहा, बिली मैंने सुना है कि तुम्हारी एक प्रार्थना सभा होने जा रही है और आपके कोई भी लोग जो यहाँ पर आएंगे तो मैं उन्हें सबसे सस्ते मूल्य में दूंगा, यहाँ उनका नया मोटल है, और उसे परिवार के मूल्य पर दिया और आदि आदि, और मैंने उसका परिचय पत्र लिया और वे कार्यालय में है और आदि आदि, और हम संपर्क कर सकते हैं और दूसरा स्थान पा सकते हैं जहां हम जब आरक्षण समाप्त हो गए, जहां से हम अच्छे दामों में सबसे अच्छी रहने की सुविधाएं जो हमारे मित्रों को ठीक रहे सोचते हैं अच्छा है। संभवतः आप में से बहुतों के घर में होगा और ये बहुत ही अच्छा है, यदि आप किसी की देखभाल कर सकते हैं ये घर के समान आरामदायक है। आप जानते हैं जब एक मसीह को आप रखते हैं, संगति करते हैं, तब आप एक प्रकार से एक साथ वचन पर चलते हैं। मैं चाहता हूं कि आप में से प्रत्येक अपनी कॉपी पेंसिल ले आए, क्योंकि हम समय, दिनांक और वचन सात कलीसियाई कालों पर देने जा रहे हैं, अंतिम सात कलीसियाई युग और वे कैसे इकट्ठी हैं, और ये भविष्यद्वक्ताई संदेश है। इसके बाद पहले मैं इसे प्रचारूंगा, तब ये टेप पर जाएगा, उससे रिकॉर्ड होगा और तब शॉर्ट हैंड से उतारा जाएगा और तब किताबों में छपेगा और पुस्तकें सात कलीसियाई युगों पर व्याख्या होगी। और यदि मैंने ये नहीं सोचा कि ये अवश्य है तो निश्चय ही मैं इसे कहने में लोगों का समय नहीं लूंगा, परंतु मैं विश्वास करता हूं कि यही अंतिम समय होगा कि हम इसे फिर कभी कलीसिया से विशेष रूप से प्राप्त करेंगे। इसलिए वास्तव में प्रार्थना में रहें इस विषय पर, वास्तव में प्रार्थना में रहें। अब अगले सप्ताह आप जानते हैं कि मुझे लुइजियाना जाना है, वहाँ बेदारी सभाएं हैं और मैं शेरपोर्ट लुइजियाना में 24 से 27 तक होऊंगा भाई मोर के साथ, शेरपोर्ट लुइजियाना में, और ये नियमित सुसमाचार सुनाने की सभा है। और तब मैं यहाँ वापस 29 या 30 को होऊंगा और यहाँ 4 दिसंबर से हम आरंभ करेंगे और प्रातः का संदेश होगा। और अब यदि मैं रात्रि में कलीसिया कालों को ना ले सका, जिसे कि मैं सोचता हूँ कि लोगों को भली प्रकार से समझ लेना चाहिए, तो फिर मैं सीधा अगली प्रातः चला जाऊंगा या अगले दोपहर बाद इसे यहाँ आराधनालय में पूरा करूंगा, तब वापस कलीसियाई युग में जाऊंगा। इसके अगली रात्रि मैं, क्योंकि मैं इसे लेने के लिए पक्का होना चाहता हूँ, क्योंकि ये आवश्यक है। हम जानते हैं कि हम बड़े ही विचित्र समय में रह रहे हैं। हम जानते हैं कि चीजें संयोग से एकत्र हो रही हैं। और अब इसमें अब मैं आराधनालय से कहता हूँ, यदि यहाँ कोई अपरिचित है जिस कारण से मैं ये संदेश आराधनालय में लाया हूँ और बाहर के कार्य क्षेत्र में सुसमाचार सुनाने में नहीं, क्योंकि यहाँ हमारा घर आधार है और यहाँ मैं जैसे भी शिक्षा को देखता समझता हूँ, प्रचार करता हूँ, जिस प्रकार से मैं विश्वास करता हूँ। अब ये किसी के धर्म के साथ टकराता नहीं, समझे? वे जो भी विश्वास करना चाहते हैं वो ठीक है। अब यहाँ बहुत बार आप जानते हैं, यदि इस प्रातः जाकर हम उंगलियों की छाप लेते हैं, यहाँ कोई भी ऐसे नहीं है जिनके अंगूठे एक से हों। वे दावा करते हैं कि दो नाकें एक सी नहीं होती। मैं समझता हूँ कि आप लोग इस बात से प्रसन्न हैं कि आपकी मेरी जैसे नहीं है, परंतु दो लोग ठीक एक जैसे नहीं होते। इसलिए दो बातें स्मरण रखें, परंतु हम मानते हैं और सहमत हैं कि हम प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं उन बातों पर। मैंने कहा, यदि एक रोमन कैथोलिक, यदि वो कैथोलिक कलीसिया पर निर्भर करता है जो कि उनकी आधारभूत शिक्षा है, परंतु यदि वो विश्वास करता है कि कैथोलिक कलीसिया उसे बचाने वाली है, तो वो नष्ट है। परंतु यदि उसे यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास है और उद्धार के लिए उस पर निर्भर करता है, तो वो बच गया। यदि एक मेथोडिस्ट या एक पेंटिकॉस्टल या एक बैप्टिस्ट, यदि वे अपनी कलीसिया या संस्था पर निर्भर करते हैं कि उन्हें बचाए, तो वे नष्ट हैं। परंतु यदि वे यीशु पर निर्भर करते हैं और उसे स्वीकार किया है, क्योंकि ये आपका व्यक्तिगत विश्वास यीशु मसीह में है कि वो आपको बचाता है, चाहे आप एक बैप्टिस्ट, पेंटिकॉस्टल, लूथरन, कैथोलिक, यहूदी या जो भी हैं, ये आपका व्यक्तिगत विश्वास यीशु मसीह में है। ये चुंबकीय टेप भी ये अब जा रहा है, इसलिए मैं निश्चित हूँ कि प्रत्येक इसे स्पष्ट रीति से समझता है। परंतु जब एक व्यक्ति शिक्षा का प्रचार करता है, तब आपको अपने विश्वास के साथ बना रहना है। यदि आप नहीं, तो आप एक ढोंगी हैं। यदि आप कुछ कहते हैं क्योंकि कोई इसे कहता है और आप अपने हृदय के अंदर आप विश्वास नहीं करते हैं, तो आप एक ढोंगी हैं, क्योंकि आप कुछ वो कर रहे हैं जिसका आप विश्वास नहीं करते। बल्कि मेरी थोड़ी सी आलोचना होगी उन बातों के लिए जिन पर मैं विश्वास करता हूँ, बजाय कि मैं परमेश्वर की दृष्टि में ढोंगी बनूं, किसी के साथ समझौते का यत्न करूं। अब यहाँ इन सभाओं में आप बहुत सी बातों से बहुत असहमत हो सकते हैं, परंतु मेरे साथ झगड़ा ना करें, क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूँ और ये सही बात है। मैं सोचता हूँ कि मैं स्पष्ट कर दूँ कि मैं विश्वास करता हूँ कि आप में से प्रत्येक, आप जो कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट या यहूदी या आप जो भी हैं, यदि आपने मसीह को स्वीकार किया है और उस पर निर्भर करते हैं कि वो आपका व्यक्तिगत बचाने वाला है, तो तो आप बचे हुए हैं, क्योंकि हम विश्वास के द्वारा बचाए गए हैं, अनुग्रह के द्वारा। इसलिए हमारी कलीसियाएं, हमारी मान्यता प्राप्त कलीसियाएं कोई अर्थ नहीं रखती। परंतु इसमें मैं सोचता हूं, यदि आप अपनी पूर्व निर्धारित धारणा से आएंगे, तो आप पाएंगे वे नामधारी कलीसियाएं जिनमें हम हैं टूट गई, जिस प्रकार से अब हम हैं, यही परेशानी आती है, समझे। और यदि हम इसे वैसे ही छोड़ दें जैसे ये था, अब मैं कुछ हटा रहा हूँ और मैं एक भाव का उल्लेख करना चाहता हूँ, और मैं निश्चित हूँ कि आप जो यहाँ पर हैं इस आराधनालय के मेरे मित्र, आप जानते हैं कि मैं ये कहने के लिए नहीं कहता। देखिए, मैंने आपको बताया है, मेरा वो अर्थ नहीं है। मैं आशा करता हूं कि मैं कभी ऐसे स्थान पर नहीं आऊंगा कि लोगों के सामने ऐसा बनूं कि मैं सब जानता हूं। यदि मैं कभी ऐसा करूं, तो कृपया कोई आकर मुझे ठीक करे और मुझे स्पष्ट करे और कहे, एक मिनट रुको, समझे। मैं वैसा नहीं होना चाहता, परंतु जब परमेश्वर कुछ कहता है और उसे सत्य सिद्ध करता है, तो मैं बता देना चाहता हूँ, क्योंकि ये मैंने नहीं कहा, ये उसने कहा है। अब और जैसे कि मैंने पिछले रविवार कहा, मैं विश्वास करता हूं कि ये यहाँ पर था। मैं इस प्रचार मंच पर 28 वर्षों से हूँ और मैंने कभी भी एक बार भी राजनीति का उल्लेख नहीं किया, बिल्कुल भी किसी प्रकार से नहीं, पिछले रविवार तक नहीं। और मैंने लोगों को बताया कि वोट डालने से पहले केवल प्रार्थना करें। उस दिन मैं भाई राइट्स के पास गया और मैं समझता हूँ कि वो पुरानों में से एक हैं, वो और भाई रॉय स्लॉटर, और उनमें से कुछ जो मुझे इन वर्षों में होते हुए जानते हैं। और भाई राइट्स को कभी नहीं मालूम मैंने कैसे मत दिया, वो कभी नहीं जानते कि मैं डेमोक्रेट या रिपब्लिकन हूँ, और वो मेरे लिए दूसरा घर है। ये इतना नगण्य है भाई राइट्स, यही कारण है। धन्यवाद, धन्यवाद। मैंने कभी भी नहीं, कोई नहीं जानता मैंने कैसे वोट दी, कोई दोनों ही दल, कोई भी घमंड नहीं कर सकता। परंतु पिछले सप्ताह कारण जिस प्रकार से मैंने भाव प्रकट किया, वो राजनीति से भी अधिक उसमें था। मैं चाहता हूं कि आप जो भविष्यवाणी दी गई है उसे पढ़ें। मेरे पास वो असंभव है, संयोग से श्री मर्सियर और उनमें से बहुत से उन भविष्यवाणियों को लेने जा रहे हैं और उनका अध्ययन करके उन्हें थोड़ा फिर से दोहराएंगे या उन्हें पूरा करके उन्हें छापेंगे। मैं आप लोगों के लिए कुछ बातें पढ़ना चाहता हूं, जिससे कि मैं चाहता हूं कि आप लोग ये वाला पहले, मैं आपके लिए कुछ पढ़ना चाहता हूं।
1932, listen to this. As I was on
1932, इसे सुनिए। जैसे कि मैं अपने कार्य पर था, जैसे कि इस प्रातः मैं आराधनालय जाने के लिए तैयार हो रहा था, ऐसा हुआ मैं दर्शन में चला गया। हमारी सभाएं मैक्स एवेन्यू में हो रही थी, पुराने अनाथ आश्रम में, जहां चार्ली कर्न उस भवन के एक भाग में रहती थी। अब वो सड़क पार रहती हैं, आप जानते हैं। और ऐसा हुआ कि जब मैं इस दर्शन में था, मैंने कुछ भयानक बातें घटित होती हुई देखी। मैं ये प्रभु के नाम में बोलता हूँ। राष्ट्रपति जो इस समय राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट हैं, अब स्मरण रखिए, ये 28 वर्षों पहले समस्त विश्व युद्ध का कारण होगा। और नया अधिनायक इटली का मुसोलिनी अपना पहला आक्रमण इथियोपिया की ओर करेगा और वो इथियोपिया को ले लेगा, परंतु ये उसका अंतिम होगा, वो अपने अंत पर आ जाएगा। हम जर्मनी के साथ युद्ध करेंगे। रूस पर ध्यान दें, अब उसे देखें, साम्यवाद, नाजीवाद और फासिज्म। रूस पर ध्यान दें, परंतु वो ध्यान देने के लिए मुख्य नहीं है। ये भी होगा, इस राष्ट्र में ये बुरी चीज हुई है, उन्होंने महिलाओं को मतदान की अनुमति दे दी है। ये स्त्रियों का राष्ट्र है और वो इस राष्ट्र को दूषित कर देंगी, जैसे हवा ने अदन को किया। अब आप देखते हैं कि मैं इस प्रकार से क्यों ताड़ना देता हूँ। मेरे पास यहोवा यूं कहता है, है। उनके मतदान में वो गलत व्यक्ति को चुनेंगी। अमेरिकन उस स्थान पर बड़ी मुंकी खाएंगे जो कि जर्मन बनाएगा, जो कि वो सीमेंट की एक बड़ी दीवार बनाएगा। मैगिनॉट लाइन 11 वर्षों पहले ये नहीं बनी थी, परंतु अंत में वे जयवंत होंगे। तब जब इन स्त्रियों ने एक गलत व्यक्ति के चुनने में सहायता की, तब मैंने एक महान स्त्री को संयुक्त राज्य में उठते देखा, अच्छी पोशाक और सुंदर, परंतु हृदय से क्रूर थी। तो वो इसका मार्गदर्शन या नेतृत्व बर्बादी की ओर करेगी। मुझे ये अंतरताल के बाद मिला, संभवतः कैथोलिक कलीसिया। विज्ञान भी विशेषतः यांत्रिकी संसार में प्रगति करेगा। मोटर कार निरंतर अंडाकार आकार लेगी और अंत में वे एक ऐसी बनाएंगे जिसमें स्टीयरिंग यानी मोड़ने वाला पहिया की आवश्यकता नहीं होगी। अभी उनके पास है, ये किसी और शक्ति से नियंत्रित होगी। तब मैंने संयुक्त राज्य को पिघली हुई दशा में जलते देखा, जगह जगह। ये अंत के समीप होगा। परंतु मुझे ये लघु कोष्ठ में मिला। मैंने ये भविष्यवाणी की कि ये घटित होगा। अब स्मरण रखें, मुझे ये प्रभु ने दिखाया, परंतु मैं ये भविष्यवाणी करता हूँ कि ये 1977 से पहले घटित होगा। इस भविष्यवाणी पर मैं आधारित हूँ, क्योंकि तेजी से आते हुए विनाश को जो आ रहा है वो कितनी तेजी से चल रहा था। ये कितना समय लेगा कि ये राष्ट्र अपना स्थान ले। अब देखिए क्या घटित हुआ। राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका को इंग्लैंड की चाय पानी पर ले गए। ये ठीक बात है, जर्मनी ने हमें कभी नहीं चुना, हमने उन्हें चुना। सारे संसार को युद्ध में झोंक दिया, जिससे विश्व युद्ध हुआ। जर्मन ने मेजिनॉट लाइन बनाई थी, जो कि कोई भी युद्ध अनुभवी यहाँ जानता है कि उसने मेजिनॉट लाइन पर क्या लिया। चुने हुए राष्ट्रपति कैनेडी के लिए महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला, महिलाओं की वोट। गलत व्यक्ति को जो कि अंत संयुक्त राज्य को कैथोलिक कलीसिया के नियंत्रण की ओर ले जाएगा, तब बम आता है जो उसके चिथड़े उड़ा देता है। 7 बातों की भविष्यवाणी की गई और उनमें से 5 घटित हो चुकी हैं। इसलिए आप स्वयं ही जांचिए कि हम कितनी दूर हैं, हम अंत के निकट हैं। यदि वे 5 बातें हो गई हैं, ये अब भी होने वाली हैं, इन्हें होना है। मैं नहीं सोचता कि श्री कैनेडी का अब अधिक प्रभाव होगा, क्योंकि वो एक शानदार राष्ट्रपति बनाएगा ताकि और को ले आए, ताकि दृश्य स्थिति को तैयार करे, जैसे उन्होंने इंग्लैंड में, जैसे उन्होंने मैक्सिको में, जैसे उन्होंने सब स्थानों में इस प्रकार से किया। और अमेरिकन लोग इतने अस्थायी हैं, आत्मिक रीति से नहीं, वे चतुर हैं, परंतु अपनी भलाई के लिए अधिक चतुर हैं। कभी कभी बुद्धिमानी पीछे को ले चलती है और पीछे गोली चलाती है। इसलिए वे, मैं इस प्रातः इस पर थोड़े में प्रचार कर रहा हूँ। इसलिए हम पाते हैं कि हम ठीक किनारे पर हैं। इसी कारण मैंने ये कहा, इसी कारण मैंने उस दिन इस पर जोर दिया था। मैंने बहुत ही कठोरता से किया, परंतु यही था जिसने ये किया। ये ठीक बात है, महिलाओं की वोट जिसने। क्या आपने टेलीविजन पर रैलियां देखी? निक्सन सब पुरुषों के बहुत समीप था, वे सब कैनेडी का चुम्बन लेना चाहती थी। वे महिला कारों के आर पार टांगे फैलाकर कूद रही थीं, इस प्रकार की बातें ऊपर नीचे कूद रही थीं। अब मैं कुछ और लेकर आऊं। मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, परंतु चुंबकीय टेप पर, और ये भी टेप किया गया है। 1956 शिकागो इलिनॉइस में खड़ा था उस विद्यालय में, लेन टेक हाई स्कूल में, वे वहाँ पर थे। मैंने कहा ये वर्ष अमेरिका के लिए एक बदलाव का वर्ष होने जा रहा है। मैं तभी विदेश से आया था, नहीं जानता था कि मैं क्यों आया। वापस आया, अपनी सभाएं अफ्रीका में निरस्तर कर दी और घूमकर वापस आया। बिली ग्राहम कुछ भेदपूर्ण रीति से अपनी सभाएं निरस्तर कर दी। टॉमी ऑसबर्न ने अपनी निरस्तर कर दी और हम सब सभाओं से संयुक्त राज्य के आर पार थे। मैंने कहा अमेरिका या तो इस वर्ष मसीह को स्वीकार करेगा या उसे अस्वीकार करेगा। तब मैंने कहा जब इन्होंने इंडियाना में 22 वर्ष का लड़का चुना कि न्यायी हो, प्रभु का आत्मा मुझ पर आया और मैंने कहा कि अंत में वे उसे राष्ट्रपति चुनेंगे, जो कि इन दलों में से एक बालकटा लड़का, अटखेलियां करने वाला गवैये प्रकार का राष्ट्रपति, महिलाओं का व्यक्ति। अब वे भविष्यवाणियां हैं जो वर्षों पहले हुई। देखिए हम कहां पर हैं, ये हमारे सोचने से पहले है। इसलिए मैं सोचता हूं कि ये संदेश इन 7 कलीसियाओं के युगों पर समयानुकूल है। हम प्रार्थना में रहें और अध्ययन करें। यदि आप असहमत हैं और कहते हैं मैं सोचता हूं भाई ब्रैनम गलत हैं, तो आपको ये करने का अधिकार है। परंतु इसके पहले आप ये करें, हम इसे खोजें कि प्रभु ने क्या कहा है वचन के साथ। देखिए यदि और भविष्यवाणियां जो दी गई थी वो घटित होंगी, और देखिए ये कहाँ हुई या नहीं। अब ये टेप आदि पर हैं, अब जानते हैं मैंने वर्षों पहले कही हैं और यहाँ ये घटित हो रही हैं। मसलूनी इथोपिया गया क्या नहीं गया? वे बेचारे काले लोग वहाँ हसीए तलवार और डंडे उनसे लड़े और वो आधुनिक यंत्रों से, उसने बस उन्हें घात किया, वापस आकर इस विषय में डींग मारी, परंतु वो अपने विनाश से मिला। ये ठीक बात है। और अमेरिकन और जर्मनियों ने विजनॉट लाइन बनाई और वे और अमेरिकनों की करारी हार हुई, परंतु अंत में जीते। बिल्कुल ठीक, आप अनुभवी भाई लोग ये जानते हैं, आप सब उस दिन और आदि आदि, वे भीतर गए। अब आप पाते हैं कि उन स्त्रियों को वोट देने का अधिकार दिया गया और उन्होंने वो राष्ट्रपति चुना जो उन्हें चुनना नहीं था, समझे? ये वो गिरावट है। अब उसका सामना, हम इस अगली सभा में आ रहे हैं और प्रार्थना में रहें, और अब बहुत प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर हमें आशीष दे और हमारी समझ खोले, ताकि हम उस घड़ी को जान सकें जिसमें हम जीवित हैं। आइए प्रार्थना के लिए अपने सिरों को झुकाएं। हमारे अनुग्रहकारी प्रभु, जैसे कि एक प्रकार से मुझे झटके का अनुभव होता है ये जानकर कि ये संसार अंतिम समय में है, मैं नहीं जान पाता हूँ कि किस देश को भाग जाऊँ। अब कोई शरण स्थान नहीं है, केवल ऊपर देखना, क्योंकि हमें ये बताया गया है जब ये बातें घटित होने लगे तब ऊपर देखना, हमारा छुटकारा निकट आ रहा है। ओ प्रभु, मैं आज पाप भरे संसार के लिए प्रार्थना करता हूँ, उसकी दशा में कि देखूं किस प्रकार से हर चीज चल रही है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि कैसे भी प्रभु आप प्रत्येक हृदय से बात करें, प्रत्येक सेवक, ताकि वो इन अंतिम दिनों में जलती हुई मशाल हो सके, प्रायश्चित के लिए पुकारे और विश्वास के लिए फिर वापस जाए परमेश्वर की जीवित कलीसिया। जैसे कि हम जानते हैं कि हम लोग लोदेशियन कलीसियाई युग में रह रहे हैं, जहां पर वे गुनगुने होंगे। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप हमें उसे कसकर पकड़ने देंगे जो हमारे पास है। मसीह, उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसके प्रकट होने के दिन को। हमारे पापों को क्षमा करें, जैसे कि हम उन्हें क्षमा करते हैं जो हमारे विरोध में पाप करते हैं। और प्रभु, हम जानते हैं कि हम बाहर के संसार को देखते हैं, ये जानते हैं कि इसे घटित होना ही है, इसे रोकने का कोई मार्ग नहीं है। यद्यपि हम इसके विरोध में बोलें, इसके विरोध में आवाज उठाएं, तब भी हम अपने हृदय में तेरे वचन के अनुसार जानते हैं ये होने जा रहा है, जो भी है तूने ऐसा कहा है। परंतु न्याय के उस दिन जब परमेश्वर का महान चुंबकीय टेप चलेगा, हम अपनी आवाज को गलत के विरुद्ध और सही के पक्ष में चाहते हैं। प्रभु आज हमारी हिम्मत अपनी उपस्थिति के द्वारा बढ़ाएं, जितने सेवक यहाँ पर हैं उन्हें आशीषित करें और कलीसिया की सारी दिव्यता चमत्कार संसार में सारे नए जन्म प्राप्त लोगों को वो महान अग्नि के निशान जो आपके पास रेडियो पर हैं और संसार के दूसरे भागों में सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, मिशनरी भूखे जा रहे हैं, पति और पत्नी घोर सताव में फिर भी अपने कर्तव्य के स्थान पर हैं, परमेश्वर आज उन्हें आशीष दे और इस छोटे से आराधनालय में प्रभु अपनी आशीषें दे, प्रभु हमारा अभिषेक कर, उन्हें भी आशीषित कर जिन्होंने आज प्रातः सय्योन के शानदार गीत गाए, ताकि हम अपने हृदय में आनंदित हों इन वर्षों में ये जानते हुए कि किसी दिन हम ये गीत मेमने की उपस्थिति में गाएंगे। आज के वचन को आशीषित करें और प्रभु संदेश का अभिषेक करें, क्योंकि हम ये यीशु के नाम में मांगते हैं और उसके लिए आमीन। मैं आपका ध्यान इस प्रातः इधर करना चाहता हूँ उत्पत्ति की पुस्तक के इन वचनों की ओर जो यहाँ पाए जाते हैं, और अब मैं इस संदेश में होते हुए जल्दी जल्दी करना चाहता हूँ, प्रभु ने चाहा तो, क्योंकि हम बीमारों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं और बपतिस्मे की सभा। मैं चाहता हूँ कि आप बाइबल की पहली पुस्तक निकालें, पुस्तक का पहला अध्याय, और हम नवे पद से पढ़ना आरंभ करें।
said,
फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसे समुद्र कहा, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार होते हैं, पृथ्वी पर उगें, और वैसा ही हो गया। तो पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। अब मैं इस विषय पर मूल पाठ लेना चाहता हूँ, प्रतिनिधित्व के द्वारा दोषी ठहरना, और प्रभु अपनी आशीष अपने वचन पर दे।
2-3 सप्ताह
पहले मैं पश्चिमी प्रांतों को पार कर रहा था गाड़ी चलाते हुए, मैंने देखा क्रिश्चियन बिजनेसमैन से और इदाहो में मिलने जा रहा था, और जब मैंने विज्ञापन पढ़ देखे और आश्चर्य में पड़ गया, वे विज्ञापन आप चारों ओर देख सकते हैं कि लोगों के मस्तिष्क में क्या है, उनके हृदय में क्या है। जैसा कि मैंने अक्सर कहा, मुझे किसी व्यक्ति के घर में जाने दो और देखें कि वे किस प्रकार का संगीत सुनते हैं और किस प्रकार की पुस्तकें पढ़ते हैं, किस प्रकार के गीत गाते हैं, उनके घर में किस प्रकार के चित्र हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, समझे, क्योंकि इससे मतलब नहीं कि वे क्या गवाही देते हैं, विपरीत है, फल सिद्ध करते हैं कि ये क्या है। और मैंने ध्यान दिया है कि हम एक महान वैज्ञानिक राष्ट्र हैं, वैज्ञानिक संसार, और मैंने विज्ञापन पटों पर देखा, विशेषकर पश्चिमी किनारे पर और आदि आदि, ये एक व्यक्ति का चित्र था जिसने गेहूं की बाल पकड़ रखी थी, दाने का छिकल उतारते हुए कह रहा था ये क्या दाना है, और ये जाना माना
मिलावटी दाना था और कैसे भी जब मैं इस पर सोच रहा था और साथ साथ जा रहा था मैं स्वयं आप अपना रेडियो और अधिक नहीं चला सकते थे क्योंकि विशेषकर उन बस्तियों में जहां पर हर स्टेशन पर वही भद्दा संगीत और वे बातें आप जानते हैं रॉक एंड रोल और आप नहीं चाहेंगे जब तक कि समाचार का समय ना हो जाए और समाचार लेंगे और मौसम तब फिर से बंद कर देंगे इसलिए मैं विश्वास करता हूँ संभव है प्रभु मेरी सहायता कर रहा है और मैंने अपने मार्ग के मानचित्र के पीछे लिखा हुआ है मिलावटी क्योंकि जब मैंने उसे देखा कोई चीज मेरे हृदय में आई ऐसी अच्छी दाने की एक बड़ी बाल मैंने सोचा जो दाना हम उगाया करते थे ये उससे बहुत भिन्न है हर चीज मिलावटी हो गई है परंतु क्या आप जानते हैं कि ये अच्छा नहीं है इसमें कोई भी जीवन नहीं है ये स्वयं को फिर से उत्पन्न नहीं कर सकता आप मिलावटी दाना नहीं बो सकते यदि आप ऐसा करते हैं तो आप केवल नाटे नाटे पौधों का खेत पाएंगे क्योंकि ये मिलावटी हो गया है फिर मैं पहाड़ों में आ गया और एक मार्गदर्शक जो मेरे साथ था वो मुर्गी पालने वाला था और वो चूजे पैदा करता था वो पिछले समय से पहाड़ों पर मार्गदर्शन किया करता था बहुत ही भला व्यक्ति और जब उसे ये मालूम पड़ा कि मैं प्रचारक हूँ तो वो एकदम से मुझे दोगली मुर्गी के बच्चे के विषय में बातें करने लगा तब उसने ये किया तो ये मेरे छोटे से मूल पाठ को फिर से वापस ले आया जो मैंने मानचित्र के पीछे लिखा हुआ था मिलावटी अच्छा जब हम अपने शिविर में बर्फ में लेटे हुए थे वहाँ पहाड़ों पर मैंने उससे कहा मैं इस प्रकार के चूजों के विषय में और जानना चाहता हूँ अच्छा उसने कहा विज्ञान ने वास्तव में बहुत ही बड़ी चीज की है कहा उन्होंने भिन्न चीजों के साथ चीजों को उत्पन्न किया है अंततः वे एक ऐसे स्थान पर आ गए हैं कि चूजे के पैर नहीं होंगे या चूजे के पंख नहीं होंगे ये बस सारा का सारा सीना होगा परंतु उसने कहा अब खराब बात जो आती है कि लोग जो इसे नहीं चाहते कि इसका मांस बहुत ही मुलायम है और चूजा एक वर्ष जीता है और ये मर जाता है
Almost dead to start with.
ये आरंभ से मराई है अब देखिए ये मिलावट हो रही है ये ठीक नहीं है अच्छा नहीं और अधिकांश लोग अब जो स्वादिष्ट मुर्गी खाना चाहते हैं बाहर गांव में जाते हैं और स्वयं मुर्गा खरीदते हैं जिसके पैर होते हैं खुरच सकता है और पंख उड़ सकते हैं और ये मुर्गा है जिस प्रकार से परमेश्वर ने इसे बनाया है परंतु ये मुर्गे को मिलावटी बना रहे हैं इसे केवल सीने तक ले आए हैं और ये आसपास खुलकता है और इसकी चौकसी करनी होती है और वे इसे बाहर नहीं छोड़ सकते ये पंजों से खुरच नहीं सकता ये स्वयं जीवित नहीं रह सकता और इसका मांस इतना बुरा होता है कि वे इसे प्रयोग नहीं कर सकते और यदि मुर्गी को अंडा देने वाली मुर्गी बनाते हैं तो इसके अंडे में से बच्चा नहीं निकलता
The chicken lays itself
और दूसरी बात मुर्गियाँ एक वर्ष में मर जाती हैं। ये केवल एक वर्ष जीवित रहती हैं। मैंने सोचा अच्छा अब कुछ और मुर्गे हैं मिलावट कर रहे हैं जो परमेश्वर ने बनाया उसे फाड़ रहे हैं
Then we had a string of mules
तब हमारे पास खच्चर की एक जाति है जो हमारे पास है और मैंने ध्यान दिया कि खच्चर भी मिलावटी है इसे परमेश्वर पर न थोपे कि उसने खच्चर बनाया है परमेश्वर का इससे कोई लेने देना नहीं नहीं ये तो मनुष्य है खच्चर नहीं जानता कि वो कहाँ से है वो स्वयं को फिर से उत्पन्न नहीं कर सकता वो मिलावटी है समझे वो नहीं जानता कि उसका पिता कौन था ना ही ये कि माँ कौन थी और वो फिर से उत्पन्न नहीं कर सकता वो केवल खच्चर है वो मरने के लिए ढलान के मार्ग पर है और कोई मतलब नहीं कि वो चाहे कितना भी यत्न करे कि अपनी जाति को जन्माए वो नहीं कर सकता ये सब परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है परमेश्वर ने यहाँ उत्पत्ति 1:11 में कहा है हर बीज अपनी ही जाति के अनुसार क्योंकि उसमें उसका जीवन है हर बीज अपनी ही जाति के अनुसार उगे परंतु मनुष्य ये दिखाने का यत्न कर रहा है कि वो अपने रचियता से अधिक चतुर है। वो ये सिद्ध करना चाहता है कि वो इस विषय में परमेश्वर से अधिक जानता है, इसलिए वो निरंतर विज्ञान से परमेश्वर को दिखाना चाहता है कि वो इस विषय में उससे अधिक जानता है, और परमेश्वर उसे करने दे रहा है उसकी वैज्ञानिक खोज के द्वारा, और ऐसा करने में वो स्वयं को मार रहा है। परमेश्वर उसे उसकी अज्ञानता में स्वयं को मारने दे रहा है। पहले मेरी माँ कहा करती थी, गाय को लंबी रस्सी से बांध दो, वो स्वयं को फंसा लेगी। ये सच बात है। और बस परमेश्वर मनुष्य को बढ़ने दे रहा है और स्वयं उसकी मूर्खता में फंसने दे रहा है। वो परमेश्वर से अधिक बुद्धिमान कभी नहीं होगा। परमेश्वर जानता है कि क्या सही है, परंतु मनुष्य अपनी मिलावट के द्वारा अच्छा फल उत्पन्न करने का यत्न कर रहा है उससे जो परमेश्वर ने उत्पन्न किया है। अब परमेश्वर ने जब उसने अपनी कलीसिया रची, उसने पेंटिकॉस्टल कलीसिया बनाई, वो मूल थी, एक पेंटिकॉस्टल कलीसिया जो पवित्र आत्मा से भरी हुई थी। पुरुष और स्त्री परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में थे। मनुष्य केवल उसे ही नहीं छोड़ सका, उसने कलीसिया को मिलावटी करना चाहा, इसलिए उसने उसमें संसार को जन्माया। उसके धर्म ज्ञान, शिक्षाएं, ये नामधारी कलीसियाएं। निश्चय ही ये सुंदर कलीसिया बनाता है। हाँ, ये मूल कलीसिया से कितना भिन्न है। हमारे पास बड़े बड़े भवन, शिक्षित प्रचारक लोग, अच्छे स्तर के ऊंचे ऊंचे अच्छी पोशाक पहने हुए अपने नाम उसमें लिखवा रहे हैं, और उनका पैसा उसमें उसे ऊंचा और ऊंचा करने के लिए अपने सेवकों को धार्मिक विद्यालयों में भेजते हैं, ताकि उनकी छात्रवृत्तियों को चमका दें, और धर्म शिक्षा सारे समय उन्हें परमेश्वर से दूर दूर ले जाते हैं। आरंभ में ये परमेश्वर की योजना नहीं थी। उसने उनमें से एक को कभी भी किसी धर्म विद्यालय में यानी सेमिनरी में नहीं भेजा। उसने उन्हें ऊपर के कमरे में भेजा कि जब तक पवित्र आत्मा उन पर न आए तब तक प्रतीक्षा करें कि प्रभु की अभिषिक्त सेवक हों। परंतु मिलावट कलीसिया को धर्म विज्ञान में ले आई, बजाय इसके कि पवित्र आत्मा इसकी अगुवाई करे, वे बिशपों, जर्नलों, ओवरसीरियों को ले आए, जबकि पवित्र आत्मा परमेश्वर का कलीसिया के लिए वास्तविक मार्गदर्शक है। परंतु उन्होंने कलीसिया में मिलावट कर दी, जैसे उन्होंने मुर्गे में की, जैसा उन्होंने खच्चर में किया, जैसा उन्होंने सब बातों में किया, इसमें मिलावट की, इसे भिन्न बना दिया। संसार को जन्म दे रहा है, संसार की वस्तुएं, बास्केटबॉल का खेल और शाम के रसदार खाने, बंको खेल और संसार की सब प्रकार की बातें। ये सत्य है, ये अधिक सुंदर है, ये पहले से बड़ा भवन है, शानदार स्तर के लोग, उनका गाना गाना स्वरों में अधिक सदा हुआ है, और आदि आदि, बजाय पुराने समय के पेंटिकॉस्टल खंजड़ी और गिटार के साथ। परंतु उसमें बीज नहीं है, इसमें इसकी गूंज नहीं है। उन्होंने सारे की व्याख्या कर दी, ये उस वाले से अच्छा है, जैसे कि उन्होंने यत्न किया, मिलावटी दाना, ये पुराने वाले से अच्छा है। ये अच्छा नहीं था, इसके अंदर का जीवन अधिक अच्छा नहीं था, बाहर का अधिक अच्छा दिखाई पड़ सकता है, परंतु जीवन सही नहीं था। और हम जीवन के विषय में बातें कर रहे हैं, मिलावट में जीवन सही नहीं है। परमेश्वर उसी प्रकार से चाहता है जैसा उसने आरंभ में बनाया था, इसलिए कलीसिया को दूषित किया गया है, और अब ये ऐसे स्थान में आ गया है कि कलीसिया एक सराय से अधिक हो गई है। तब ये पेंटिकॉस्टल आशीष के समान थी। विद्वान अधिक शिक्षित हैं, बजाय प्रचारक होने के वे छात्रवृत्ति पाने के स्थान में अधिक हैं, ताकि बड़ी बड़ी छात्रवृत्तियां पाएं। हमारे पास्टर के पास डिग्री है या कुछ इस प्रकार का धर्म विज्ञान, और वे स्वयं को उत्पन्न नहीं कर सकते। ऐसे ही सुंदर जैसे वे हैं, वे अपने आपे में वापस नहीं आ सकते। आप कैसे करेंगे, वे स्वयं को पार नहीं कर सकते। मेथोडिस्ट से बैप्टिस्ट को पार करना चाहते हैं, और देखिए आपको क्या मिला। आपको पहले से अधिक आवारा लोग मिले, ये ठीक बात है, आप नहीं कर सकते। आपको नाटे मिले, ये ठीक बात। आप मिलावटी दाना बोएं, वे इस प्रकार से उत्तर आते हैं और पीले पड़ जाते हैं, उसमें कोई जीवन नहीं है। यही कारण है ये उत्पन्न नहीं कर सकता। और आज कलीसिया के साथ यही मामला है, इसमें कोई जीवन नहीं है, इसमें बहुत ही दिखावा है। और अच्छे प्रकार के लोग हैं, वे कहते हैं बड़े बड़े दाने, अच्छे भवन, अधिक विद्वान प्रचारक, परंतु नया जन्म देने के लिए उनमें जीवन नहीं है। कैम को वापस पार नहीं कर सकते। जब दाना पहले बोया गया था, दूसरे स्थान पर वे भीतर आते हैं, तब इसे मिलावटी कर दिया। और पहली बात आप जानते हैं, ये कभी भी वापस नहीं आ सकता। मैं किसी भी विद्वान से कहता हूँ कि मेरे साथ इतिहास में चलें। कोई भी कलीसिया जिसने अपनी मूल नेव को छोड़ा, वो कभी भी फिर वापस आने योग्य ना हुए। जब परमेश्वर ने लूथर को भेजा, उसके पास एक बेदारी थी, उसने संसार में धूम मचा दी, परंतु वो संस्थागत हो गया, ये संसार के साथ दूषित हो गया, जैसे कि कैथोलिक कलीसिया। और जब उसने किया, उसने क्या किया? उसने आवाराओं का झुंड उत्पन्न किया, मिलावटी, और वो फिर कभी नहीं उठा और कभी नहीं उठेगा। फिर साथ साथ जॉन वेस्ली आया और वही काम किया एक बेदारी के साथ, और जैसे ही वो और एसबरी और पुराने संस्थापक मरे, वे संस्थागत हो गए और वेस्लियन मेथोडिस्ट कलीसिया बनाई, और वे कभी नहीं उठे और वे कभी नहीं उठेंगे, फिर नहीं। एंग्लिकन कलीसिया, वही बात, कॉल्विन से हट गए। जब उनमें बेदारी थी वो ठीक था। भाई सैमसन अब अपनी जेब में बंद हैं, कनाडा से एग्लिकन कलीसिया में देश में चले गए सेवकगण, और वे सब पीने के लिए उन्होंने अपनी बियर और जिन शराब और चीजें एक साथ मिलाई, ठीक आराधनालय में दावतें और शराब पी। ये क्या है? ये कभी भी फिर अपने मूल पर वापस नहीं जा सकते, क्योंकि ये संसार से दूषित हो गया, ये नष्ट हो गए। अब हम एंग्लिकन के विषय में बात करते हैं और मेथोडिस्ट और बैप्टिस्ट, परंतु पेंटिकॉस्टल वैसा ही है। कुछ वर्षों पूर्व हमारी पेंटिकॉस्टल कलीसिया थी जो कि आग से भरी थी, परंतु उन्होंने क्या किया? इसे नामधारी कर दिया, इसे वापस संसार में ले गए। अब आपके पास क्या है? ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर ने खच्चर के साथ किया, ये अब अपने शैतान के ढलान पर है, ये कभी भी वापस नहीं आएगा, ये समाप्त हो गया, नामधारी हो गए और टूट गए। और अब उनके पास अच्छा आराधनालय है। वो पेंटिकॉस्टल लोग छोटे से उद्देश्य पर गली के कोने पर होते थे, इस विषय पर भगा दिए जाते थे यहाँ से वहाँ और जेल में डाले जाते थे, आधे समय सारी रात चिल्लाते थे। निश्चय ही उनका कठिन समय था उससे जो अब है। क्या हुआ? वे आपस में मिल गए, वे बैप्टिस्टों के समान हो गए, बैप्टिस्ट मेथोडिस्टों के समान, मेथोडिस्ट लूथरनों के समान, लूथरन कैथोलिकों के समान। आपके पास क्या है? मिलावट वाला जंगली गधों का एक झुंड। ये ठीक है, सबसे अज्ञानी चीज जो मैं जानता हूँ वो खच्चर है। उसकी कोई व्यक्तिगत भावना नहीं। वो मृत्यु के अंतिम क्षण तक आपके पास झिलमिलाता रहेगा ताकि आप पर मार करे। आप सिवाय घी और हों को छोड़कर कुछ नहीं जानते। उसके पास भावात्मक अनुभव नहीं है। वो नहीं जानता कि उसका पिता कौन है, उसकी माँ कौन थी, वो कहाँ से था और कहाँ जा रहा है। ये आज बहुत से लोगों के समान है, लगभग वैसा ही। क्या आपने कभी खच्चर को देखा है? आप उससे बात नहीं कर सकते। वो वहाँ अपने कान निकाले खड़ा है, उस बड़े लंबे मुंह और उन कानों को देखें, चिपके हुए, इस प्रकार से बहुत से गधे करते हैं। ये ठीक बात है, खड़े होकर आपकी ओर देखते हैं और रेंकते हैं। आश्चर्य कर्मों के दिन बीत गए, वो दिव्य चंगाई और अन्य अन्य भाषाओं में बात करना पवित्र आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है। ये ठीक बात है, खच्चर का धर्म, ये ठीक बात है, मिलावट। वो केवल इतना जानता है, वो कभी भी कुछ और नहीं जान सकता। उसे रहने दे, हम परमेश्वर के साथ साथ चलें। मिलावट, एक खच्चर, नहीं जानता कि कहाँ से आया है। वो वंशानुगत नहीं है, वो वंशानुगत नहीं हो सकता, परंतु एक घोड़ा भिन्न है। जी हाँ श्रीमान, आप अच्छे वंश का एक घोड़ा लें, वो एक सभ्य और अच्छा है, बाहर जाकर और आसपास कूदेगा, आप जानते हैं, और वापस आता है और अपना सिर आपके कंधों पर रखेगा और अंदाजा लगाकर और आगे बढ़ेगा। वो एक अच्छा जानवर है, वो वफादार है, आपके साथ बना रहता है। क्यों? वो जानता है, उसके पास कागज है कि आपको दिखाए कि उसका वंश है। आमीन। उसके पास लिखा हुआ है कि उसका वंश है, उसका लहू दूषित नहीं है। इसी प्रकार से नया जन्म पाए परमेश्वर के संत के साथ है। आप उसे बता सकते हैं यीशु मसीह कल आज और सर्वदा एक सा है। वो यही शोर करता है आमीन, क्यों? वो वंश वाला है। उसका अनुभव बाइबल में लिखा है। वो यीशु मसीह के लहू से जन्मा है। वो मसीही वंशज है। महिमा हो। वहाँ कोई मिलावट नहीं। वो वास्तविक है, सज्जन है, नम्र है। आप उसे कुछ सिखा सकते हैं। आज्ञा पालन का यत्न करता है। आप उसे प्रदर्शन में ले जा सकते हैं। उसे मनुष्य के समान बना लेते हैं। वो सिर झुकाएगा, ठुमके मारेगा, कूदेगा। आपने खच्चर को ये करते हुए कभी नहीं देखा होगा। किसी खच्चर को प्रदर्शन में नहीं देखा होगा कि इस प्रकार से अभिनय करे, क्योंकि उसमें ये आरंभ से ये गुण है ही नहीं। यही कारण है कि नया जन्म प्राप्त मसीही दिव्य चंगाई को स्वीकार कर सकता है। नया जन्म प्राप्त मसीह पवित्र आत्मा को स्वीकार कर सकता है, क्योंकि उसमें कुछ है, उसके अंदर गहराई में कुछ है कि जो उससे विश्वास करवाता है। परमेश्वर का आत्मा वहाँ है, परमेश्वर के वचन को प्रमाणित कर रहा है, जहाँ की वो वंश में पाया जाता है। जी हाँ, परंतु खच्चर ऐसा नहीं करता। वे नहीं कर सकते। उनमें ऐसा कुछ नहीं है जिसके द्वारा वे ये कर सके।
You know, Eve was the mother of hybrid.
अब इस मिलावट पर आप जानते हैं कि हवा इस मिलावट की माँ थी। उसने मानव जाति में गड़बड़ की। आप जानते हैं जब उसने ये बुरा कार्य किया। और मैं जानता हूँ कि ये टेप ऊपर है, इसलिए हम इसे उनके लिए छोटे रूप में बनाएंगे यदि वे चाहते हैं। तो परंतु जब उसका सर्प के साथ व्यवहार हुआ, जो कि सर्प नहीं था, ये एक भूमि पर रेंगने वाला, बाइबल ने कहा कि वो सारे पशुओं में सबसे अधिक धूर्त था। विज्ञान अब इसे खोजने का यत्न कर रहा है। वे हड्डियाँ किसी प्राणी की, बंदर और मनुष्य के मध्य की, और इसे काले लोगों पर लगा रहे हैं, और इस प्रकार से आदि आदि। वे अज्ञानता है जैसे कि वे आ सकते हैं। सर्प एक मनुष्य था। पशु का लहू मनुष्य के लहू से नहीं मिलेगा, नहीं श्रीमान। परंतु ये जाति इतनी समीप थी वहाँ मध्य में, जब तक उसने नहीं मिलाया। और शैतान इस बात को जानता था, एक बड़ा दानव। क्या ये विचित्र नहीं है कि इसके पश्चात उन्होंने बड़े दानव पाए? मेरी इच्छा है जोसेफोस लेखक ने इस विषय में ये सोचा, वे दानव कहाँ से आए? सर्प का वंश। बाइबल ने कहा कि वो सर्प वंश का कारण होगा। सर्प का वंश था और स्त्री का वंश। परंतु अच्छा हो कि हम इसे यहीं छोड़ दें। वे इसका विश्वास नहीं करते, इसलिए हम इसे उनके लिए छोटे रूप में लेते हैं। परंतु जब उसने ये किया तो उसने सारी चीज को दूषित कर दिया। कृपया उस हास्यपद चीज को ना लें, एक सेब का पेड़। जैसा कि मैंने अक्सर कहा है, यदि सेब खाना स्त्रियों को ये अनुभव करा देता है कि वे नंगी थी, तो अच्छा हो कि उन्हें फिर से सेब खिला दें, क्योंकि यही समय है। इसे अनपढ़ होना ना कहें, परंतु मैं ये कह रहा हूँ इसे प्रसंग बनाने के लिए कि ये सत्य है। सेब नहीं था, इसे हम हंसी में ना लें। ये सेब का पेड़ नहीं था, परंतु हम इसे दूसरे वृक्ष पे लें ताकि हम इसे निकाल सकें और अपने मूल पाठ को पूरा कर सकें। हम इसे लें, विश्वास का पेड़, जिसे हवा ने इसे मना किए हुए पेड़ से भी लिया, अविश्वास। तब हम मूल विषय को इसमें से निकालते हैं। ये विश्वास था। उसने परमेश्वर के वचन का अविश्वास किया। परमेश्वर ने कहा अमुक अमुक बात घटित होगी। उसे चाहिए था कि इसे छोड़ देती। उसे जैसा परमेश्वर ने कहा था विश्वास करना चाहिए था, परंतु नहीं। शैतान अपने धर्म विज्ञान के साथ आया और उसने इसमें मिलावट कर दी। उसने इसे आदम को दिया और ये मिलावटी विश्वास का कारण हुआ। आज कलीसिया के पास यही है, कहलाने वाली कलीसिया, एक मिलावटी विश्वास। ये भय, संदेह, अधीरता से मिलावट है। यदि ये वास्तविक था तो ये नहीं हिलता। परमेश्वर कुछ भी कहता है वो उसी प्रकार होगा। परंतु देखिए, उसने इसमें मिलावट कर दी। वही जो परमेश्वर ने कहा वो लो, और शैतान ने क्या कहा, और इसे आपस में मत दो, मिला दो और कहो ये यहाँ पर है। इसी प्रकार से आज बहुत से लोग करते हैं। देखिए, वे वही लेते हैं जो बाइबल कहती है और जो मनुष्य कहता है, ये मिलावटी विश्वास बनाता है। और जब वे करते हैं तो वे इसे वापस लाते हैं। ओ, ये सुंदर कलीसिया बनाता है निश्चय ही, परंतु इसमें जीवन नहीं है, मरा हुआ है, एक मिलावटी विश्वास। ओ, मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर था, हाँ, परंतु अब आज वो चंगा करने वाला नहीं है, ये मिलावटी विश्वास है। मैं विश्वास करता हूँ कि उसने पहले पेंतेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा दिया था, परंतु आज ये हमारे लिए नहीं है, एक मिलावटी विश्वास, परमेश्वर के द्वारा दोषी, मिलावटी, बेकार, उससे अलग रहें, ये बुराई है, ये संदेह को भीतर लाता है। संभव है मैं वहाँ जाऊँगा और चंगा हो जाऊँगा, संभव है प्रभु मुझे चंगा करे, ये मिलावटी विश्वास है, ये अच्छा नहीं है, ये कलीसिया का विश्वास है। हम परमेश्वर का विश्वास चाहते हैं, परमेश्वर ने कुछ कहा है और वही सत्य है, उसी के साथ लगे रहें। आमीन। हो मेरी इच्छा थी कि मेरे शब्द लोहे की लेखनी से लिखे जाते, जो परमेश्वर ने कहा है उसी के साथ बने रहें, यही सत्य है। मिलावटी विश्वास, ये इब्रानियों 13 पढ़ेगा और कहता है यीशु मसीह कल आज और सदा एक सा है, इब्रानियों, और तब मिलावटी विश्वास भीतर आता है। भाई, एक विशेष रीति से वो कल आज और सर्वदा एक सा है, परंतु वो नहीं है, वो आज चंगा नहीं कर सकता क्योंकि ये उसकी योजना से बाहर है, परंतु सच्चा विश्वास कहेगा वो एक सा है, ये मिलावटी नहीं है, ये नहीं है, ये मनुष्य के धर्म विज्ञान से नामधारी नहीं हो गया, खच्चर का धर्म नहीं, मनुष्य का वचन और परमेश्वर का वचन एक साथ मिल गए, जैसे कि मिलावटी दाखलता। यीशु ने कहा आरंभ में ऐसा नहीं था, और आरंभ में ऐसा नहीं था, परमेश्वर चाहता है हर बीज अपने ही तरह का फल लाए, और हमने किसी भी चीज को मिलावट कर दिया, हमने परमेश्वर की योजना को नष्ट कर दिया। आप एक फूल लें, सच्चा फूल, बैंगनी, नीला या सफेद, उसे अकेला छोड़ दें, ये फिर वापस सफेद हो जाएगा, आपको उसे हर समय उसकी पौधशाला लगानी पड़ेगी। परमेश्वर ने विभिन्न वस्तुएं बनाई हैं, वो भिन्नता को पसंद करता है, और मिलावट करना एक ऐसी भयंकर और बुरी बात है, यहाँ तक कि ये परमेश्वर की योजना को नष्ट कर देती है, ये मनुष्य जाति को नष्ट कर देती है। परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण में भी कहा है एक अवैध बालक कई पीढ़ियों तक उसे अनुमति नहीं है प्रभु की सभा में आने की, 10 पीढ़ियों तक, वे विचार कितना बुरा है। 10 पीढ़ियां, 400 वर्षों तक मिलावट से पहले, एक स्त्री जिसका एक पुरुष से विवाह हुआ, या एक मनुष्य ने स्त्री ब्याही जो पवित्र बंधन की रेखा को पार करेगा, वो अवैध संतान उत्पन्न करेगा। वे पीढ़ियां परमेश्वर की सभा में 10 पीढ़ियों तक नहीं आएंगी। व्यवस्था विवरण 30:23-2, ठीक है, वो नहीं आएगा। एक अवैध बालक वो था, उसकी पीढ़ी या उसकी पीढ़ी या उसकी पीढ़ी, यद्यपि वे ऐसा के समान यत्न कर रहे हैं, स्थान पाने के लिए रो रहे हैं, ये 10 पीढ़ियां लेता है। एक पीढ़ी 40 वर्षों की होती है। क्या आप बुरे भ्रष्ट संसार को देख सकते हैं? न्याय के लिए तैयार है, इतना बुरा, जो परमेश्वर ने जोड़ा उसे पार कर गए। एक स्त्री अपने पति के विरुद्ध दूषित जीवन व्यतीत करती है, पति अपनी पत्नी के लिए दूषित जीवन व्यतीत करता है, और अवैध बालक उत्पन्न करते हैं। और कुछ स्त्रियां कहती हैं, ओ क्या वो सुंदर नहीं है, महान, बड़ा, लंबा व्यक्ति, ये वही बात है, संभव है, जो हवा ने सोची। उसने अवैध बालक को जन्म दिया, और अवैध बालक केन था, और केन से दानव आए। ये सदा से प्रभु की ओर से श्रापित रहा है, मिलावटी, इससे अलग रहो, मिलावटी धर्म, इसमें मिलावट मत करो। यीशु ने कहा यदि तुम में सरसों के दाने का सा विश्वास हो, उसने क्या किया, सरसों के दाने के समान करम कल्ला और पालक एक संग मिलाए गए, बलात्कार बनाना, परंतु सरसों किसी के साथ नहीं मिलेगी, सरसों, वास्तविक सरसों, आप इसमें मिलावट नहीं कर रहे हैं, ये सरसों हैं, वे जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, वे संसार के साथ मेल नहीं रखते, वे मिलावटी नहीं हैं, वे परमेश्वर के साथ स्थिर रहते हैं, वे उसकी योजना के साथ स्थिर रहते हैं, वे उसके आत्मा के साथ स्थिर रहते हैं, वो किसी भी मिलावटी चीज के साथ नहीं मिलना चाहते। इसे कितना बड़ा और चमकदार ना बनाएं, जैसे दूसरी कलीसियाएं दिखाई पड़ती हैं, उनकी सभा कितनी बड़ी है और चमक दिखाई पड़ती है, कितनी शानदार, उनके पास कितने अधिक लोग हैं, ये उनकी दशा में जरा सा भी नहीं है। मैंने सदा उस गीत को पसंद किया है, प्रभु मुझे सिखा कि मैं प्रतीक्षा करूं, जब हृदय जल रहे हों, जब वे बड़े बड़े भवन बना रहे हों और उनके पास बड़ी बड़ी चीजें हों। प्रभु मुझे प्रतीक्षा करना सिखा, जब हृदय जलते हों, मेरे घमंड को नम्र कर अपने नाम को पुकार। मुझे सिखा जो दूसरे करते हैं उस पर निर्भर ना करूं, परंतु आपसे उत्तर पाने को प्रार्थना में प्रतीक्षा करूं, क्योंकि जो प्रभु पर आश्रित होते हैं अपनी सामर्थ्य को नया करेंगे, उनके उकाबों के समान पंख होंगे, वे दौड़ेंगे पर श्रमित ना होंगे, यदि वे चलेंगे तो थकित ना होंगे। ओ प्रभु मुझे सिखा, प्रभु मुझे सिखा, प्रभु की मैं प्रतीक्षा करूं। मिलावटी वस्तुओं के साथ ना चलो, ये ठीक नहीं है, अंततः ये अपने अंत पर आ जाएंगी, ये वापस नहीं जा सकती। जब ये मिलावटी है ये समाप्त हो गई, ये स्वयं को फिर उत्पन्न नहीं कर सकते, यदि करते हैं तो ये बौने होते हैं। देखिए क्या वेस्ली की बेदारी, जब हम इसे फिलेडेल्फिया युग में लेते हैं, उनके पास क्या बेदारी थी। अगली बेदारी को देखें, बौने और बौने होते चले गए, जब तक बौने, देखिए अब ये कहाँ है। देखिए बैप्टिस्ट कहाँ से आरंभ हुए, जॉन स्मिथ के साथ, देखिए ये कहाँ है, बौने हो गए। पेंतिकोस्तलों को देखें, ये 1906 में आरंभ हुए, वे संसार के साथ घुल मिल गए, संसार की वस्तुओं को भीतर ले आए, संसार की शिक्षा, उन्होंने पवित्र आत्मा के बदले हाथ मिलाने को लिया, उन्होंने डुबाने के स्थान पर छिड़काव अपना लिया, उन्होंने पानी का बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम के स्थान पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा का अपना लिया, जैसे संसार ने, उन्होंने पवित्र आत्मा पाने के लिए हाथ मिलाने को अपना लिया, अन्य भाषा बोलने के बजाय और परमेश्वर की सामर्थ्य पीछे पीछे आए, उन्होंने दिव्य चंगाई डॉक्टर के यहाँ डाल दी, बजाय कि अपने घुटनों को प्रार्थना में झुकाएं, उन्होंने स्वयं को मिलावटी कर दिया और वे बौने हो रहे हैं, हर वर्ष बौने हो रहे हैं। वे बातें बाइबल में नहीं है, वे शिक्षाएं, परंतु लोकप्रिय होने के लिए स्वयं को एक कलीसिया बनाने को उन्हें एक पंक्ति में लाना है, जैसे वे अब हैं, कलीसियाओं के संघ में स्वयं को भीतर लाने को, स्वयं को औरों के समान बनाने के लिए उन्होंने ये किया, स्वयं को नाटा कर लिया, नाटे होते चले गए। पेंटिकॉस्टल की पहली पीढ़ी ज्वलंत थी, दूसरी पीढ़ी मरने लगी, यही अब देखिए कि तीसरी पीढ़ी क्या लाती है। ये सारी रीति से बाहर नहीं जा रही है, यीशु के आने के पहले, क्योंकि लुदिकिया काल की कलीसिया गुनगुनी थी, ना ही गुनगुने ना ही गरम, इसमें अब भी थोड़ी सी आशीष बची है। वे मिलावटी हो गए थे, एक यहाँ और वहाँ पीछे, वे मिल गए, कुल मिलाकर ठंडे नहीं परंतु गरम। परमेश्वर ने कहा कलीसिया और उसकी पकड़, तुम यहाँ तक कि मुझे पेट से रोगी बना देते हो, जब मैंने तुम्हें पवित्र आत्मा दिया और तुमने इसे संसार के साथ मिला दिया और संसार की वस्तुओं को भीतर आने दिया, मैं सारी संस्था को अपने मुंह से थूक दूंगा। परंतु छोटे झुंड तू मत डर, वे जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया है, ये तुम्हारे पिता की भली इच्छा है कि तुम्हें राज्य दे। वचन के साथ स्थिर रहें, वचन जो भी कहता है उसी के साथ स्थिर रहें। आप किसी के साथ भी किसी से संमिश्रण न करें, चिंता न करें कि बिशप, आर्च बिशप, कोई मनुष्य क्या कहता है, इसके विषय में कुछ भी, वचन के साथ ही स्थिर रहें। और पत्रस ने पेंतेकुस्त के दिन कहा, प्रायश्चित करो और यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो। बाइबल जगह जगह उनके बपतिस्मे हुए यीशु मसीह के नाम में। इसके लिए कभी भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा को स्वीकार ना करो। यदि आप ये करते हैं तो आप स्वयं में मिलावट करते हैं। अब आप मुझे बाइबल में एक स्थान में भी दिखाएं, कहीं पर किसी का पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा हुआ। ये वहाँ नहीं है, ये मनुष्य के द्वारा बनाया गया धर्म विज्ञान है, ये कलीसिया में दूषित किया गया, मूर्ति के लिए एक अवसर दिया गया, जैसे कि ये अब राष्ट्रों में आ रहा है। मैं आपको इतिहास के द्वारा सिद्ध कर सकता हूँ और बाइबल के द्वारा कि कोई भी जिसका बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा से हुआ है वो कैथोलिक कलीसिया में हुआ है। वे अपने ही प्रश्नोत्तरों में यानी कैटेगिज्म में कहते हैं, क्या कोई प्रोटेस्टेंट बचेगा। कहा उनमें से कुछ जिन्होंने हमारी शिक्षा को ग्रहण किया वे बाइबल में विश्वास करने का दावा करते हैं। बाइबल ने कहा प्रायश्चित करो और बपतिस्मा लो। पत्रस ने पेंतेकुस्त के दिन कहा और आदि आदि, यीशु मसीह के नाम में उनकी बाइबल ये सिखाती है, परंतु वे हमारी शिक्षा को स्वीकार करते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ये प्रश्न उत्तर हैं। ये प्रोटेस्टेंटों की शिक्षा नहीं है, ये कैथोलिक की शिक्षा है, परंतु हम जैसे पेंतेकुस्तल मनुष्यों के बनाए गए धार्मिक विज्ञान में सम्मिश्रित हो गए हैं। आप देखिए हम कहाँ पहुँच रहे हैं? कोई आश्चर्य नहीं, परमेश्वर बेदारी नहीं भेज सकता, बनाने के लिए कुछ नहीं है। तब वो व्यक्तिगत मनुष्य को लेगा और उन पर बनाएगा और संसार के सामने उनकी घोषणा करेगा कि कौन वचन के साथ स्थिर है। छिड़काव, किसी ने कभी सुना? डुबाने के द्वारा पानी का बपतिस्मा स्वीकार कर रहे हैं, इसे वहाँ से हटाओ और इसे छिड़काव में बना दो। किसी ने कभी सुना उन्हें संगति का दाहिना हाथ दो कि उन्हें कलीसिया में सम्मिलित करें या पत्र के द्वारा? निरर्थक, मिलावटी है। हम सबको एक ही मार्ग के द्वारा आना है। किसी ने कहा कि मैं मेथोडिस्ट हूँ क्योंकि मेरी माँ मेथोडिस्ट थी। संभव है माँ मेथोडिस्ट मसीही हो, परंतु वे आपको वो नहीं बनाते। वो बैप्टिस्ट मसीही हो सकती है, परंतु वे आपको वो नहीं बनाते। जैसे कि मैंने अक्सर डेविड का भाव बताया है, डेविड डुप्लेसिस की कहावत है, परमेश्वर के पास पोते पोतियां नहीं है, परमेश्वर के पास पोते पोतियां नहीं है, परमेश्वर दादा नहीं है। बाइबिल में कहीं भी नहीं कहा कि परमेश्वर दादा है। इसलिए आप क्यों उस अतिवादी त्रिएकतावाद के विचार को लेते हैं? परमेश्वर पिता एक, परमेश्वर पुत्र दूसरा, पिता और तब परमेश्वर पवित्र आत्मा, ये परमेश्वर को दादा बनाता है। परमेश्वर के पास पोते पोतियां नहीं है, परमेश्वर के पास पुत्र पुत्रियां हैं। पोते पोती नहीं, पुत्र और पुत्रियां। वो पोते और पोतियों को स्वीकार नहीं करता। हर व्यक्ति को उसी प्रकार से आना है जैसे दूसरा आया। आपको पुत्र और पुत्री होना है। इसलिए आप देखिए मिलावट, इसने क्या किया? बस एक कलीसिया। हम सब हवा के द्वारा दोषी हैं, मिलावट के द्वारा। ये बिल्कुल ठीक बात है। हम सब हवा के द्वारा उस स्थान पर आ गए हैं। हवा ही सारी मानव जाति के गिरने का कारण हुई। वो आदम एक है, वो स्त्री। ये स्त्री से आरंभ हुआ, इसका स्त्री से ही अंत होगा। एक मनुष्य उसमें कहलाया, पाप का मनुष्य। वे पृथ्वी पर पाप क्षमा करते हैं, उनकी शिक्षा लेते हैं और लोगों को देते हैं और वे इसे पीते हैं। इस पृथ्वी के लोग, राजा लोग, बाइबल कहती है उसकी व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए। उसका व्यभिचार क्या है? उसकी असत्यता। एक स्त्री व्यभिचार करती है, अपने पति के प्रति झूठा जीवन व्यतीत करती है। एक कलीसिया जो व्यभिचार करती है, कुछ ऐसा प्रचार करती है जो परमेश्वर का वचन नहीं है, कलीसिया को दूषित करता है। उसने क्या किया? उसने कुछ पुत्रियों को भी जन्म दिया। अब पुत्री क्या है? कैथोलिक कलीसिया। लूथर कहाँ से आई और नीचे चलते आए? बेनामधारी कलीसियाएं और संस्थाएं। देखिए ये कहाँ से भीतर आए? परंतु परमेश्वर की सच्ची कलीसिया उन सब के भीतर बसी हुई है। मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन और सब उसमें से होते हुए एक वास्तविक सच्ची परमेश्वर के लहू से खरीदी हुई, जैसे लाल धागा जो भेदियों ने लटकवाया। वे वहाँ घुल मिल गए, परंतु उनकी नामधारी कलीसिया उन्हें बचा नहीं सकती थी। क्या आप मसीही हैं? मैं प्रेस्बिटेरियन हूँ, मैं बैप्टिस्ट हूँ, मैं मेथोडिस्ट हूँ। परमेश्वर के लिए ये अर्थहीन है। जब आप नया जन्म प्राप्त करते हैं तो आप मसीही हैं। वो इस सब का कारण हुई। बहुत सी बार मैंने लोगों को कहते सुना है, तब भाई ब्रणम, चूँकि आदम और हवा ने बुराई की, परमेश्वर के वचन को मिलावटी कर दिया और हमारी इस स्थिति के कारण हुए। यदि वो मुझे दोषी ठहराता है तो परमेश्वर अन्यायी है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने कभी पाप नहीं किया, ये आदम था जिसने पाप किया। बाइबल ने कहा मैं पाप में उत्पन्न हुआ, अपराध में बड़ा हुआ, संसार में झूठ बोलता हुआ आया, इसलिए किसी ने मेरा प्रतिनिधित्व किया। लड़के यहाँ विचार है, ये आपका दम घोट सकता है। किसी ने आपका प्रतिनिधित्व एक पापी के समान किया, परंतु ये वो था जिसने वचन में मिलावट की। और आज यदि आप आशा कर रहे हैं कि पेंटिकोस्टल कलीसिया या मेथोडिस्ट बैप्टिस्ट आपका प्रतिनिधित्व करे, ये वचन को दूषित और दोषी ठहराएगा। आप दोषी हुए क्योंकि आदम ने आपको दोषी ठहराया। आदम और हवा एक होने के नाते मिलावट के रूप को स्वीकार किया और संसार को दोषी ठहराया। तब आप कहते हैं भाई बहनों मैं क्यों? परमेश्वर मुझे क्यों उत्तरदायी ठहराता है? क्योंकि एक मनुष्य ने मेरा प्रतिनिधित्व किया और मैं मरता हूँ। क्योंकि उस मनुष्य ने पाप किया तो फिर मैं प्रतिनिधित्व के द्वारा पापी ठहरा। ये ठीक बात है, आप प्रतिनिधित्व के द्वारा पापी हैं। वो कभी भी परमेश्वर आपको पापी होने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराता। वो आपको इसलिए उत्तरदायी नहीं ठहराता कि आप झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं और जो कार्य आप करते हैं, वो आपको पापी होने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराता। वो आपको इसलिए उत्तरदायी ठहराता है क्योंकि आप स्वयं अपनी सहायता नहीं करते। आपके लिए एक मार्ग रखा है, आपने जो मार्ग परमेश्वर ने रखा है उसे अस्वीकार किया, इसलिए परमेश्वर आपको दोषी ठहराता है। एक बच निकलने का मार्ग है मिलावट करना। मिलावट करना, ओ कितना भयानक है मिलावट करना। वे लोगों को दूषित करते हैं। न्यूयॉर्क एक बड़ा ढालने वाला बर्तन। मैं मेरे सैकड़ों काले मित्र हैं जो कि नया जन्म पाए हुए मसीह हैं, परंतु इस अलगाववाद और दूसरी बातें, वे लोगों में मिलावट करने के विषय में बातें कर रहे हैं। क्या मुझे बताए कितने अच्छे सभ्य अच्छे मसीही काली महिला चाहेंगी कि उनका बालक श्वेत पुरुष के द्वारा मिलावटी हो। नहीं श्रीमान, ये ठीक नहीं है। श्वेत महिला चाहती है कि उसका बालक काले पुरुष से मिश्रित हो। परमेश्वर ने हमें वही बनाया है जो हम हैं। हम वही स्थिर रहे जो हमें परमेश्वर ने बनाया है। मैं विश्वास करता हूँ कि ये ठीक बात। जब वो बड़ा विवाद यहाँ एयरपोर्ट में हुआ, अधिक समय नहीं हुआ, वहाँ वो अश्वेत प्रचारक खड़ा हुआ। मेरे हृदय में उसके लिए स्थान है। कहा मुझे इस बात से कभी भी लज्जा नहीं आई कि मैं एक अश्वेत मनुष्य हूँ। कहा मैं वही हूँ जैसा मुझे परमेश्वर ने बनाया है, और मुझे इस बात पर घमंड है। बोला मैं इस बात पर लज्जित हूँ जिस प्रकार से लोग आज व्यवहार कर रहे हैं, मेरे अपने लोग व्यवहार कर रहे हैं, इससे मुझे लज्जा आती है। ओ प्रभु, मित्रों हम क्या कर रहे हैं? लोग सोचते हैं वे इस विषय में सब जानते हैं। लोग संभ्रांत हैं। आप उन्हें वैसे ही रहने दें जैसे जिस प्रकार से परमेश्वर ने उन्हें बनाया है। भूरी जाति भूरी जाति से विवाह करे, श्वेत श्वेत से विवाह करे, काली जाति पीली जाति या जो भी है उसी प्रकार बने रहें जैसे परमेश्वर ने उन्हें बनाया है। यदि एक बैंगनी परमेश्वर ने इसे बनाया है, ये सफेद या उसे सफेद रहने दो, ये नीला काला भूरा ये जो भी फूल है उसे रहने दो। यदि भुट्टा किसी विशेष रीति से उगाया गया है, पीला भुट्टा इसे सफेद से ना मिलाएं। यदि आप करते हैं तो आप मिलावट करते हैं, तो ये स्वयं को फिर से उत्पन्न नहीं कर सकता। यदि एक खच्चर या गधा 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 ही था, गधी गधी ही है आरंभ से ही, उन्हें वैसा ही रहने दो, उन्हें घोड़े के साथ मत मिलाओ। आप एक दो धर्म त्यागी बना रहे हैं। मिलावट करना, ओ ये एक ऐसा श्राप है। वहीं जाएं जहां से परमेश्वर ने आरंभ किया है। हम आरंभ में चलें, वहीं चलें जहां से परमेश्वर हमें लाया है। हमें क्या होना चाहिए? मैं ये आदर के साथ कहता हूं, मैं ये सम्मान के साथ कहता हूं, मैं अफ्रीका जा रहा हूं, परंतु आप जानते हैं क्या मेरे अमूल्य अश्वेत भाई और बहन, एक सबसे महान गलती जो इस राष्ट्र ने इस वर्ष 11 नवंबर को की, ये महान भयंकर गलती है। एक सबसे महान गलती जो अश्वेत जाति ने कभी की, वो लुइजियाना में थी। वहाँ जब उन्होंने कैनेडी को मत दिया, उस रात्रि उसे भीतर लिया। वास्तव में उन्होंने अब्राहम लिंकन के उस वेशभूषा पर थूका जहाँ रिपब्लिकन पार्टी ने उन्हें लहू से स्वतंत्र कराया और एक कैथोलिक को मत दिया। बूथ ने लिंकन को गोली मारी और वो जाति के लोगों को स्वतंत्र कराने के लिए मरा और उन्हें गुलाम न बनने देने के लिए तब घूमकर डेमोक्रेट इसके अलावा कैथोलिक को मत दिया। वे एक बड़े महान कलंक को ले आए जैसे कभी उत्तेजित नहीं हुए, क्योंकि क्यों श्वेत मनुष्य अपने छात्रवृत्ति के साथ उन्हें बहुत सी धूमधाम दी। ये बिल्कुल ठीक बात। मैं बहुत ही आनंदित हूँ कि उनमें से बहुत से जानते हैं कि वे कहाँ खड़े हैं। वैसे ही जैसे मैं मसीह पर थूकूं जिसने मुझे चंगा किया, मुझे एक पापी होते हुए बचाया, और किसी बात के लिए उसके विरुद्ध हो जाऊं, अपनी पीठ फेर कर चला जाऊं। ओ ये दूसरी वंश से मिश्रित संतान उत्पन्न करना, ओ किस प्रकार से ये संसार कितने समय तक चलेगा, कोई आश्चर्य नहीं। प्रभु का दर्शन ये कहता है यहाँ कि अंत में मैंने उसे उस स्थान पर देखा जहाँ पर वो केवल एक बड़ा धधकता हुआ ढेर है, वो धमाके से उड़ा दिया गया। मित्रों हम अपने मार्ग से अलग हैं, कोई मार्ग नहीं, आसपास कोई मार्ग नहीं है, हमें इसका सामना करने के लिए आना ही है। मिलावटी संतान कहते हैं मैं इसका उत्तरदायी नहीं हूँ क्योंकि हवा ने ये किया है, उसने हम सब का प्रतिनिधित्व किया है, आदम ने हमारा प्रतिनिधित्व पापियों के समान किया है और हम पापी हैं। उसने हमारी गिरे हुए मानव स्वभाव का प्रतिनिधित्व किया है कि हमें परमेश्वर के वचन से अलग कर उसमें मिलावट करना। ओ मैं जानता हूँ परमेश्वर ने कहा, परंतु निश्चय ही परमेश्वर जानता है कि मैं प्रेस्बिटेरियन हूँ, मैं मेथोडिस्ट हूँ, मैं पेंटेकोस्टल हूँ। परमेश्वर ये समझता है। परमेश्वर एक ही बात समझता है, वो लहू है। बस यही समझता है, वो लहू को जानता है। वो रंगों की पंक्ति को नहीं जानता, वो कोई भी जाति को नहीं जानता, चाहे मनुष्य काला नीला सफेद या भूरा या जो भी उसका रंग हो, परमेश्वर इस विषय में कुछ नहीं जानता। वे उसके पुत्र और पुत्रियां हैं। उसने उन्हें वाटिका के फूलों के समान बनाया है। वो उन्हें वैसे ही देखना चाहता है जैसे वे हैं, उन्हें वैसे ही रहने दो। हवा ने इस बुराई को आरंभ किया जब उसने दूसरी चीज से जो मनुष्य के समीप थी संतान उत्पन्न की। वो वंश में मिलावट करेगा क्योंकि शैतान का वंश था जिसे निरंतर कुचला जाना था। मैं इसे विश्वास की ओर से लेता हूँ उस निर्बल मसीह के लिए जो इसे नहीं समझता। आइए पहले विश्वास को लें, तब कहें विश्वास के द्वारा, जन्म देने के द्वारा बजाय विश्वास के, जैसे आप कहते हैं भाई बर्नम। तब हवा धर्म विज्ञान को ले आई, वो और आदम एक दूसरे से बहस करने लगे और पीछे छोड़ दिया, जैसे कि फौज में कहते हैं दूसरे पर टालना। स्त्री तूने मुझे दिया, सांप ने मुझे बहकाया, सांप ने मुझे बहकाया। बहकाने के लिए कभी भी सेब नहीं दिया, समझे, किसी के पास भी जानने के लिए साधारण तर्क होना चाहिए, परंतु सर्प ने मुझे बहकाया, कुछ असम्मानजनक। परमेश्वर ने उसे श्रापित किया, यहाँ तक कि वे उसकी हड्डी नहीं ढूंढ सकते, सांप में मनुष्य के समान दिखता, वे इसे कभी भी नहीं ढूंढ पाएंगे, वे मूर्ख बनते हैं, खोजते हैं बस, परमेश्वर का भेद उसके पास है, ये ठीक बात। जोसेफ उसने कहा, एक महान इतिहासकार, क्या आप जोसेफ जैसे इतिहासकार की कल्पना कर सकते हैं, जो ये कहता है कि परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा और उन्होंने स्वयं को स्वर्गदूतों से मनुष्य की देह में प्रविष्ट किया, एक इतिहासकार। यदि ये ऐसा है तो फिर शैतान सृष्टि करता है, तो फिर हम कहाँ हैं, समझे, केवल एक ही सृष्टि करता है जो परमेश्वर है। शैतान केवल उसको दूषित करता है जो परमेश्वर ने सृजा है। अधर्म केवल धार्मिकता को दूषित किया गया। पति पत्नी का विवाहित होना वैध है, परंतु दूसरे के साथ भाग जाना नहीं, देखा, ये दूषित होना है। मृत्यु, विकृत किया गया जीवन और विकृत की गई कलीसिया मूल में से निकाली गई। इसलिए हम सब दोषी ठहरे मनुष्य के द्वारा उस प्रतिनिधित्व से। आदम ने परमेश्वर के सम्मुख हमारा प्रतिनिधित्व पापियों के समान किया, उसके वचन के अविश्वासी के समान। ओ, परमेश्वर ने ऐसा कहा, परंतु मैं जानता हूँ कि परमेश्वर एक भला परमेश्वर है, वो ये नहीं करेगा। मैं ये बहुत सुनता हूँ, परमेश्वर एक भला परमेश्वर है, परंतु परमेश्वर न्याय का परमेश्वर है, परमेश्वर पवित्रता का परमेश्वर है, परमेश्वर धार्मिकता का परमेश्वर है, परमेश्वर क्रोध का परमेश्वर है। हम उसके सन्मुख खड़े होंगे जब वो क्रोधित है, बाइबल ने ऐसा कहा है, और उसकी उपस्थिति भस्म करने वाली आग है, ये ठीक बात है। अपनी भावनाओं के आधार पर परमेश्वर को ना आंकें, हमें परमेश्वर को उसके वचन से आंकना है जो उसने कहा। किसी झांसे में ना आए, ये एक महान कलीसिया है जिसने बहुत से तूफान सहे हैं, ये और वो, परमेश्वर जो कहता है उस पर वापस आओ। मैं उसके समक्ष खड़ा हूँ, मैं उसके वचन में कभी भी मिलावट करने के लिए दोषी न ठहरूं, या उसमें से कुछ घटाने के लिए वैसे ही विश्वास करूं जैसा कि वो लिखा है। लोगों को सिखाएं कि खींच करके ठीक वहीं ले आएं। बाइबल ये कहती है, कोई क्या कहता है, मैं उसमें कोई सहायता नहीं कर सकता, मुझे ठीक इसी के साथ बने रहना है। पैर धोने के लिए वे कहते हैं, ओ, पेंटिकोस्टल भाई था वो, भाई ब्रैनम, ये हम ये किया करते थे, हम इस सब हम अब भी करें, यदि हमने इसे एक बार किया है, यीशु ने ये किया है, पैर धोए। ओ, कहते हैं ये स्वस्थ नहीं है, लोगों के खेल कूद वाले पैर होते हैं, मैं चिंता नहीं करता वो कैसे हैं, उन दोनों में उनके ऐसे हो सकते हैं। हाँ हाँ, ये ठीक है, जीन परमेश्वर चंगा करता है, समझे। वे बच निकलने का मार्ग ढूंढने का यत्न करते हैं, जैसे कहते हैं, ओ, मैं उसी गिलास में पानी नहीं पीऊंगा जब तक उसे गर्म पानी से ना धोया जाए। ओ, मेरे भाई बहनों, आमीन। यदि कुछ गलत है तो परमेश्वर मेरी रक्षा करने वाला है, मैं उस पर विश्वास करता हूँ। आइए वचन पर वापस चलें। उसके रंग की चिंता न करें, वो जो भी है या वो किस कलीसिया से संबंधित है, यदि वो मेरा भाई है, वो मेरा भाई है, मैं परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करूंगा। मित्रों, यही कारण है जब यीशु मसीह के नाम में पानी के बपतिस्मे पर आते हैं, मुझे वहीं बने रहना चाहिए। ओ, वो मुझे बहुत से महान वहाँ प्राणों को बचा रहा है, निश्चय ही उस एक विषय पर ये यही करता है, उस अतिवादी त्रियेकता के विश्वास के कारण। निश्चय ही मैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का परमेश्वर के कार्य क्षेत्र के रूप में विश्वास करता हूँ, ना कि तीन ईश्वर, परंतु तीन कार्यस्थल एक ही परमेश्वर के। वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है, परंतु ये उसके कार्यस्थल के उपनाम हैं। वो निश्चय ही परमेश्वर पिता है, वो आरंभ में था, वो परमेश्वर है, पुत्र जो पृथ्वी पर देहधारी हुआ, वो परमेश्वर, पवित्र आत्मा है जो मुझ में है, परंतु वो एक ही परमेश्वर है, सब मिलाकर तीन कार्यस्थल। एक समय वो छुआ नहीं जा सकता था या कुछ नहीं, तब वो नीचे उतर कर आया और शरीर बना और मेरे पाप उठा लिए, मेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया। तब जबकि उसने मुझे अपने ही लहू से पवित्र किया, ताकि पवित्र आत्मा भीतर आ सके और वो और मैं संगति कर सके, जैसे हमने अदन की वाटिका में की, हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। वो मेरा पिता है, मैं उसका पुत्र हूँ। तीन ईश्वर नहीं, वही परमेश्वर जिसने मुझे रचा, मुझसे प्रेम किया, मेरे लिए स्वयं को दे दिया, परमेश्वर है जो मुझ में है, उसका नाम यीशु मसीह है। जब वो पृथ्वी पर था तो स्वर के नीचे मनुष्य के मध्य में कोई दूसरा नाम नहीं था जिससे आप बचाए जाते। अब मेरे मित्रों, ये सत्य है, मैं इसमें सहायता नहीं कर सकता सिवाय कि अपने मित्र को चोट पहुंचाऊं, बजाय अपने पिता के, समझे, वो मेरा संबंधी है, मेरा पिता, उसका वचन यही कहता है। परमेश्वर मुझे किसी भी बात में मिलावट ना करने दे। ये आश्चर्य कर्मों के दिन बीत गए, ओ, यीशु अब ऐसा नहीं करता, ओ, ये तो टेलीपैथी हो सकती है, ये मस्तिष्क को पढ़ना हो सकता है, मैं विश्वास नहीं करता कि इन दिनों में हमारे पास भविष्यद्वक्ता है। बाइबल कहती है हमारे पास होगा मैं इसका विश्वास करता हूँ। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसके पहले आगमन के आगे आगे चला, हम एक ऐसे ही अभिषिक्त की राह देख रहे हैं जो मसीह के दूसरे आगमन के आगे आगे चलेगा। जैसे उसने किया, उसने इस बात की प्रतिज्ञा की है, लोगों के विश्वास को वापस परमेश्वर पर लाना। यूहन्ना को क्या करना था? विश्वास को वापस लाना, वो विश्वास जो वास्तव में एक बार, वो वास्तविक बीज जो अदन की वाटिका में था, परमेश्वर का वचन ले, जहाँ की ये कलीसिया बाध्यता से दूषित किया गया, यूहन्ना इसे फिर से वापस ले आने को आया। हालेलुया! राष्ट्र को हिलाने के लिए प्रभु के बड़े और भयानक दिन के आने के पहले ये यूहन्ना का उद्देश्य था, वो अभिषेक किया हुआ। ध्यान दें, आप ये भी कहते हैं, अच्छा तो ये मुझे क्यों दोषी ठहराता है? क्योंकि आदम और हवा ने ये किया, उन्होंने मेरा प्रतिनिधित्व एक पापी के समान किया, मैं इसमें सहायता नहीं कर सकता। हाँ, परंतु भाई एक दिन एक को फिर से महिमा में से आना है। वो वही है जिसके विषय में मैं लगभग 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। एक महिमा से आया और मिट्टी हो गया, एक आया और पाप में शरीर का रूप धारण किया, वो भी हमारा प्रतिनिधित्व करने को आया। शैतान ने उसे वश में करने का यत्न किया, ओ उसने यत्न किया। हर बार शैतान उसे वश में करने का यत्न करता रहा, परंतु वो ऐसा कभी नहीं कर सका। उसने क्रूस उठाई और चला गया। आमीन। शैतान उसे हरा नहीं सका, नहीं नहीं, वो भिन्न प्रकार का आदम था। वो महिमा से हमारा प्रतिनिधित्व करने आया। क्या? अच्छा, आदम ने कहा, यदि मेरी पत्नी ऐसा कहती है, मैं समझता हूँ ये ठीक है। उसने कहा कि उसके पास प्रकाशन था, मैं समझता हूँ कि ये विधि है, मैं जानता हूँ कि परमेश्वर कहता है कि ये इसी प्रकार से है, परंतु मेरी पत्नी ने कहा है। आज स्थानीय कलीसिया के सदस्यों के साथ यही है। ओ, मैं जानता हूँ कि बाइबल कहती है, परंतु मेरी कलीसिया यही कहती है। ओ, तुम बेचारे अभागे ढूंगी, या तुम नहीं देखते परमेश्वर ने कहा मेरा वचन सच्चा और हर मनुष्य का वचन झूठा हो? परमेश्वर को उसके वचन पर लें, ये परमेश्वर का वचन है। चिंता नहीं मेरी पत्नी ने क्या कहा, मेरी कलीसिया ने क्या कहा, ये वो है जो परमेश्वर ने कहा। इसलिए जब वे अपनी पत्नी के प्रेरणा देने वाले को देखते हैं, हवा, जब वो यीशु से मिलने को आया, ये कहा, ओ हाँ, ये लिखा है कि वो स्वर्गदूतों को तेरे लिए अधिकार देगा कि कभी भी तेरे पांव को पत्थर की ठेस लगे वो तुझे उठा लेंगे। हाँ, उसने कहा, ये भी लिखा है। वो उससे आगे ना निकल सका, वो परमेश्वर देहधारी था, वो मेरा बचाने वाला और मेरा परमेश्वर, वो उससे आगे नहीं निकल सका। तब उसने क्या किया? उसने क्रूस को स्वीकार किया और क्रूस पर वो मेरे और आपके लिए और संसार के लिए मर गया, ताकि वो फिर से परमेश्वर के पास वापस ले आए। क्या? जैसे पुत्र और पुत्रियां अदन की वाटिका में, इसके पहले कि वे धर्म विज्ञान से आगे निकलें। ओ परमेश्वर, यदि लोग केवल इसे देख सकें, यदि मैं केवल इसे लोगों में प्रहार से उतार सकूं। यीशु मर गया कि वो लोगों को इस मिलावटी कलीसिया की बातों से अलग कर सके, ताकि वो आपके मस्तिष्क और विश्वास को मनुष्य ने जो कहा है उससे अलग कर सके, और जो परमेश्वर ने कहा है वही वापस ला सके। मिलावटी विश्वास नहीं। अच्छा, संभव है आश्चर्य कर्मों के दिन बीत गए हों, संभव है ये घटित ना हो। ओ भाई, परमेश्वर ने कहा, ये घटित हुआ और ये तय हो गया, ये सदा के लिए परमेश्वर ने ऐसा कहा है। यीशु मर गया ताकि वो फिर से उत्पन्न कर सके। ओ हालेलुया, केवल लहू ये कर सकता था, केवल यीशु मसीह के लहू के रसायन के द्वारा फिर से जन्मा सकता है एक मनुष्य जो परमेश्वर के कहे हुए से जरा भी ना हटे। हवा ने अपनी निर्बलता दर्शाई, कलीसिया ने दर्शाया कि उसने क्या किया। उसने कहा, अच्छा हो सकता है आप ठीक हो, संभव है परमेश्वर मुझे उत्तरदायी ना ठहराए, क्योंकि बस मैं नहीं करता। यदि मैं हो, इससे क्या अंतर पड़ता है जब मैंने बपतिस्मा लिया हुआ है, समझे, जब तक मैं, इससे क्या अंतर पड़ता है? ओ आप नहीं, ये तो ये दर्शाता है कि आपको एक दूसरे जन्म की आवश्यकता है। ये दर्शाता है कि किसी चीज को आपके पास आना है, आप में जो परमेश्वर ने कहा है उसका विश्वास लाना। कोई बिंदु नहीं या परमेश्वर के वचन का एक बिंदु भी नहीं टलेगा जब तक वो पूरा ना हो। हर मनुष्य का वचन झूठा और उसका सच्चा ठहरे। मसीह आया ताकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा फिर से जन्मा सके। ओ भाई, जैसा कि हम मसीह यीशु में स्वर्ग स्थानों में इस समय बैठे हुए हैं, पवित्र आत्मा हम पर फूंक रहा है, जैसे कि हम अब हैं, फिर से जन्माना, धर्म विज्ञान का सारा कूड़ा बाहर निकालना, संसार का मनुष्य निर्मित शिक्षाओं को बाहर निकालना, भक्ति का भेज भरना, उसकी सामर्थ का इनकार करना, इसे परमेश्वर पवित्र विश्वास में फिर से जन्माना। यीशु ने कहा, शैतान ने कहा, वो मैं जानता हूँ ये लिखा हुआ है, परंतु तू जानता है ये कहा तू, उसने यीशु ने कहा और ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, हाँ ये लिखा है कि वो ये करेगा और तुम घूमोगे। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तुम आश्चर्य कर्म कर सकते हो यही मेरे सामने, और पत्थरों को रोटियों में बदल दो, मुझे भी देखने दो तुम ये करते हो, वो शैतान को याद दिलाएगा। देखो परमेश्वर की चालाकी, ये लिखा है मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहेगा। देखो उसे ठीक वचन के साथ, वो कभी भी, उसने शैतान को हरा दिया, हर बार ठीक वचन पर वो वचन के साथ बना रहा। और यदि वो हमें फिर से जन्मा कर परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बनाने को आया जैसे कि हम आरंभ में थे, तो फिर हम वचन से क्यों कर अलग हो सकते हैं? हम कैसे कहीं और जा सकते हैं जब तक हम वचन पर वापस ना आ जाएं? ओ मैं विश्वास करता हूं कि ये टेप लोगों के पास जाते हैं और आप मेरी सुन रहे हैं संसार के उस छोर तक कि आप ये अनुभव करें, हमारे पास है। यदि हम मसीह के हैं, हम मसीह से उत्पन्न हुए हैं, हमें वचन पर वापस आना ही है। हम कभी भी लोगों को ये सिखाने योग्य ना होंगे। मेरे भाइयों, हम संसार में बड़े बड़े आराधनालय बना सकते हैं, हम शिक्षा की बड़ी बड़ी योजनाएं बना सकते हैं, हमने ये करने का यत्न किया है, ये सर्व धर्म त्यागी बनाता है। अधिकांश अपराधी कहाँ से आते हैं? अनपढ़ लोगों में से नहीं, परंतु पढ़े लिखों में से, उस रेखा से जो ऊंचे ऊंचे पढ़े लिखे हैं। अधिक समय नहीं हुआ मैं FBI के प्रतिनिधि के साथ खड़ा था और उसने दीवार की ओर संकेत करके कहा मैं आपके उपदेश की सराहना करता हूँ। उसने कहा, आपने कहा है कि ये निर्धन वर्ग के लोग नहीं हैं जो निर्धनों को जन्म देता है, जो अधिक नहीं जानते, वे लड़के इसके साथ मूर्ख बनने से डरते हैं, परंतु ये इस प्रकार के हैं जो सोचते हैं कि वे दूसरों धूर्तों को चला देंगे। वे देखते हैं कि उसने कहां पर गलती की है और यत्न करते हैं। वो सीधा कलम पकड़ता है और समस्त राष्ट्र के किशोरों के अपराधों को दर्शाता है और उनमें से 80% या अधिक पड़ोस के संभ्रांत लोगों में से होते हैं, तेज और चालाक। आरंभ में देखिए, अब ये दर्शाता है कि ये केन के पुत्र हैं। केन के लोगों को देखिए, केन के लोग क्या थे, उन पर ध्यान करें, वे केन के वंश से आ रहे हैं। वे क्या थे? वे चालाक, वैज्ञानिक, डॉक्टर, ऊंचे लोग, धर्मी, ऊंचे लोग। उन्होंने आविष्कार किए और विभिन्न धातुओं को कैसे कड़ा करें, अच्छे भवन कैसे बनाएं। वे वैज्ञानिक थे। दूसरे कहां से होते हुए आए? देहाती, किसान, भेड़ चराने वाले, आदि आदि। ये देखिए, आज इसे देखिए, ये ऊंचे विचार वाले, इन्होंने कलीसियाओं में मिलावट कर दी, यहाँ तक कि कलीसिया निर्धन अनपढ़ व्यक्ति को नहीं चाहती जो वास्तव में भीतर आकर के प्रभु से प्रेम करता है। और हो सकता है प्रचारक कुछ कहे, वे आमीन कहते हैं, वे उसे दरवाजे से बाहर ले जाएंगे। वे उन्हें अपनी भक्त मंडली में नहीं चाहते यदि वो सही से वस्त्र नहीं पहन सकता और जोन के समान या किसी के समान। देखा, वे उन्हें वहाँ नहीं चाहते यदि वे अच्छी कार नहीं चलाते, पुरानी खटारा, आराधनालय के सामने। भाई भाई, ओ क्या आप नहीं देख सकते? आज बहुत से लोग काले लोगों को अपनी कलीसिया में स्वागत नहीं करते। ओह परमेश्वर, ऐसे ढोंगियों पर दया कर। परमेश्वर, मैं इसे सदा चाहता हूँ, जब तक मेरे पास आराधनालय है, जो चाहे इसके लिए द्वार खुला है, मैं चिंता नहीं करता। यदि आप खींचने वाली गाड़ी में आते हैं, आप आए, मैं चिंता नहीं करता। यदि आप बड़े बड़े कपड़े पहनते हैं, मैं एक बात कहूँगा, आप परमेश्वर के साथ ठीक हो जाएं। एक ढीले पुराने जोड़े वाला महंगे सूट वाले के साथ बैठ सकता है और वे सब एक दूसरे के गले में हाथ डालेंगे और एक दूसरे को भाई कहेंगे। निश्चय ही ये होगा। एक सूते कपड़े वाली सिल्क वाली के पास बैठेगी और उसे गले में हाथ डालकर कहेगी, बहन, हाँ इससे आपको कुछ होता है, ये फिर से जन्म देता है। अब आप क्या कर रहे हैं? मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं, अपने धर्म ज्ञान को नहीं ले रहे हैं, परंतु पवित्र आत्मा को हमें फिर से परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां जन्म देने रहे हैं। सत्रह शब्द का क्या अर्थ है? स्तफनुस ने कहा, ये ठीक बात है, फालतू मांस को काट देना, समझे, फालतू को काट देना, वो भाग जिसकी आवश्यकता ना हो, खतना काट देना। अब पुराने नियम में केवल पुरुष में ही खतना हो सकता है, अनावश्यक मांस काट दिया गया था। अब पवित्र आत्मा क्या करता है इन अंत के दिनों में? ये अनावश्यक को काट देता है, संसार के धर्म विज्ञान को काट देता है, मनुष्य की बनाई हुई शिक्षा को काट देता है, सारे अविश्वास को काट देता है, हर चीज को काट देता है। इस्तफनुस ने कहा, तुम हृदय और कान के खतना रहित लोगों, तुम क्यों सदा पवित्र आत्मा का सामना करते हो जैसे तुम्हारे बाप दादों ने किया, तुम भी करते हो। मित्रों, ये यहीं पर है, आपको इससे अलग होना है। कहते हैं अच्छा, अब मैंने उस रात्रि उपदेश सुना था, वे दिव्य चंगाई करने वाले, वे अच्छा हो कि तुम उन पर ध्यान रखो। ये दिव्य चंगा करता नहीं है, मैं भी उन पर ध्यान रखूंगा, परंतु मैं परमेश्वर के वचन पर ध्यान रखूंगा। वचन इस प्रकार से कहता है, समझे? हाँ, आपको उन लोगों पर ध्यान रखना है जो अन्य भाषा बोलने पर विश्वास करते हैं, क्योंकि वे तो दूसरे दिन थे, वे कुछ नहीं, शैतान है। वचन ने क्या कहा? संसार के अंत में विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे, मेरे नाम से वे अशुद्ध आत्माओं को निकालेंगे, वे नई नई भाषा बोलेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे, वे चंगे हो जाएंगे। कलीसिया के लिए यीशु का अंतिम प्राधिकार। आज पवित्र आत्मा क्या करने के लिए कहता है? सारे अविश्वास को काट डालो, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। लोगों को शुद्ध वचन की ओर फेरने का यत्न करेंगे, जहां परमेश्वर ने कहा है, जैसे कि धर्म विज्ञान से पहले अदन की वाटिका में था। इसे अदन की वाटिका में जैसा था फिर से वैसे ही वापस फेर लाओ। जब मनुष्य परमेश्वर के संग संग चला और उसने कहा, यदि पेड़ यहाँ पर ठीक नहीं दिखाई पड़ता तो उसने कहा, तू यहाँ से उखड़ कर इधर आ जा। हवा चल रही थी, कहा शांत रहे और थम जा, और वो वहीं रुक गई। वो जो भी था, उसने सारे पशुओं को नियंत्रित किया, पृथ्वी पर सब कुछ उसका था, वो पृथ्वी का ईश्वर था, उसके पास नियंत्रण की सामर्थ्य थी। इस सारे दूषित वातावरण में एक स्वर से उतर कर आया और ये सिद्ध किया कि ये परमेश्वर की योजना थी, क्योंकि वह परमेश्वर का पुत्र था। और उसने क्या किया? मर गया ताकि हम वापस आएं और उसके लहू की धार्मिकता से पवित्र हो जाएं। और आज प्रातः वो हमारा प्रतिनिधित्व करता है। हालेलुया। अब आपके लिए जो कहते हैं, आपके लिए ये गलत है कि आदम के द्वारा आप पापी घोषित किए जाते हैं। उस विषय में क्या है कि उद्धार के लिए प्रतिनिधित्व किया गया है? आप स्वयं को नहीं बचा सकते कि आप अपने जूतों को कसकर उसके साथ चांद पर कूद पड़े। आप कुछ नहीं कर सकते, आप पाप में जन्मे हैं, आप आरंभ से ही स्वधर्म त्यागी हैं, उसमें से प्रत्येक, और हम अपनी सहायता नहीं कर सके। और हम कैसे बचने जा रहे हैं? एक हमारा प्रतिनिधित्व करने आया, यीशु, वो परमेश्वर के सम्मुख हमारा प्रतिनिधित्व परमेश्वर के पुत्र पुत्रियों के समान करने आया। और अब वो अपना पवित्र आत्मा भेजता है जो स्थान के ऊपर मंडरा रहा है, हमें जन्म की ओर वापस लाने का यत्न कर रहा है। स्वयं के लिए मर जाओ और फिर से जन्म लो, परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हो जाओ, परमेश्वर को उसके वचन के आधार पर लो कि परमेश्वर का विश्वास करो। अब यदि प्रतिनिधित्व के द्वारा हम दोषी ठहराए गए, हम कैसे दोषी ठहराए गए? शकन यानी दोगलेपन के द्वारा, संसार में जन्म लेने के द्वारा, परमेश्वर की बातों के साथ, इस प्रकार से ये हमारे पास है। अब हम कैसे सकर या दोगलेपन से बच सकते हैं? मिलावट की चीजों से अलग रहो, इस पर वापस आओ, परमेश्वर के सत्य वचन के कारण कि जो परमेश्वर ने कहा है वो सत्य है, इसी के साथ बने रहिए, ये फिर से आपको इसी में जन्माएगा। एक मार्ग बना हुआ है, परमेश्वर के सिंहासन पर एक खड़ा हुआ है कि इस प्रातः आपका प्रतिनिधित्व करे। आपके माता पिता ने आपका प्रतिनिधित्व किया, आदम और हवा के समान किया, ये ठीक बात है। जब पवित्र बंधन के द्वारा आपने संसार में जन्म लिया तो ये परमेश्वर की ओर से ठहराया गया था कि बालकों को जन्म दें। अब आप वापस ठीक उसी स्थान पर हैं जहां आदम और हवा अदन की वाटिका में थे, आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां। आप ठीक वापस उन दो वृक्षों के पास हैं, उनमें से एक ज्ञान का वृक्ष और दूसरा जीवन का वृक्ष। अब क्या आप विज्ञान के मिलावट की विधि से जाना चाहते हैं? देखिए आप कहां पहुंचे? क्या मनुष्य ने स्वयं को किस प्रकार की गंदगी में फंसा लिया? ये मिलावटी संतान अपने ही ज्ञान के द्वारा उसने स्वयं को किस प्रकार के बखेड़े में फंसा लिया? विपरीत इसके, एक बालक होने के नाते नम्र और परमेश्वर पर निर्भर करने वाला, वो विज्ञान लेने का यत्न कर रहा है और परमाणु तोड़ता है। देखिए अब वो कैसी गड़बड़ में है, परमेश्वर उसे स्वयं को नष्ट करने दे रहा है। बस मनुष्य ने आरंभ में स्वयं को परमेश्वर की संगति से अलग, ज्ञान के वृक्ष के द्वारा स्वयं को नष्ट कर लिया। उसने जीवन के वृक्ष को छोड़ दिया ताकि ज्ञान के वृक्ष में से खा सके। उस दोगले वृक्ष से बाहर आ जाएं, यहाँ मूल फल पर उसको ले लें, इसमें जीवन है, उसमें से खाओ। यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ जो स्वर्ग में परमेश्वर के पास से आया हूँ। तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया जिसमें विश्वास मिला हुआ नहीं था। देखिए जंगल में मन्ना खाया और वे सब मर गए, परंतु मैं जीवन की रोटी हूँ जो स्वर्ग से परमेश्वर के पास से आया हूँ। जो इस रोटी में से खाएगा उसके पास अनंत जीवन है। मैं उसे अंतिम दिन जिला उठा खड़ा करूँगा, वो कभी भी नाश ना होगा, उसके पास अनंत जीवन है। आइए इस प्रातः वृक्ष के पास वापस आएं। जो मनुष्य कहता है उससे अलग रहें, जो कलीसिया कहती है उससे अलग रहें। हम वापस आकर बाइबल लें और बाइबल पर विश्वास करें। हमें बहुत देर हो गई है इस उपद्रव में जाने से, समझे? हम कोई बड़ी संस्था अपनाने नहीं जा रहे हैं जो उठी हो। अब मैं ये सिद्ध कर सकता हूँ, इन कलीसिया युगों में हम कभी भी कोई संस्थाएं खड़ी नहीं करने वाले हैं। लौदीकिया कलीसिया काल पेंतिकोस्तल का प्रभाव नीचे 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 इस प्रकार से जा रहा है, परंतु कोई और महान बेदारी कभी नहीं होगी जो इस राष्ट्र पर प्रभाव डाले। केवल वही थोड़े से कलीसिया में से चलते रहेंगे जो कि होने वाला है, क्योंकि ये बाइबल कहती है कलीसिया काल गुनगुनी अवस्था में समाप्त होता है। ये ठीक बात है, इसलिए इसे इसी प्रकार से आना है। अब सबको इस अंत प्रजनन से अलग रहना चाहिए। हम वास्तविक पर वापस आएं, मूल फल पर। हम वहीं वापस चले जाएं जहां से परमेश्वर ने हमें परमेश्वर का पुत्र पुत्रियां बनाया था, कि जो परमेश्वर ने कहा उसी पर निर्भर करें और स्त्री के अंत प्रजनन के वचनों को ना लें। देखिए कैसे प्रकृतिक आत्मिक की प्रतिछाया है। आप यहाँ मेरे दर्शन को लिखा हुआ देखें कि कैसे महिलाओं को मतदान का अधिकार मिलेगा। इस राष्ट्र को किसने नष्ट किया है? अब सुनिए, आप मसीह महिलाएं नहीं, स्त्री किसी भी राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी होती है। आप मातृत्व को तोड़ दें, आप राष्ट्र को आरंभ से तोड़ते हैं। ये इतिहास में से है। अमेरिकन स्त्री क्या है, क्या होती थी? हम फैशन लाने के लिए पेरिस जाते हैं। अब पेरिस या फैशन लेने के लिए आता है अपनी भद्दी गंदी जीवन शैली, हमारे पास आते हैं कि फैशनों को ले लें। क्या हुआ? शैतान ने हमारी महिलाओं को नंगा कर दिया। उन्होंने अपने कपड़े उतार दिए। हर वर्ष वे थोड़ा और उतार देती हैं। वे अपने बाल कटाती हैं, जिसे परमेश्वर कहता है ये गलत है। ये छोटे पुराने कपड़े पहनती हैं, जिसे बाइबल ने कहा ये परमेश्वर के समक्ष घृणित है कि एक महिला वो कपड़े पहने जो पुरुष से संबंधित हैं। और अब आप नहीं बता सकते कि वे पुरुष या महिलाएं हैं। धूम्रपान करते हैं, मिलावट, ठीक है, मिलावट। वे ये भी नहीं जानते कि वे पुरुष या स्त्रियां हैं। ये ठीक बात है, आप कठिनता से बता सकेंगे कि वे किस लिंग से हैं उनको देखने और सुनने से। मित्रों, ये सत्य है। मसीह महिलाओं, मैं ये आपके विषय में नहीं कह रहा हूँ, मेरी आवाज़ बहुत से राष्ट्रों में जा रही है, परंतु ये एक मिलावट है। ये अमेरिकन दोषी ठहर गए हैं, और दर्शन के अनुसार उसने क्या किया है, उसने गलत व्यक्ति को चुना है। मैं नहीं जानता कि ये कितने समय तक चलेगा, परंतु ये किसी दिन होगा। यहोवा यूं कहता है, ओ ये होगा। अब ये नीचे अपनी गिरावट की ओर है, ये कभी भी वापस नहीं आएगी, ये समाप्त हो गई। ये ठीक बात है, ये 1956 से समाप्त हो गई, जब इसने परमेश्वर को छोड़ पीठ मोड़ ली उस महान बेदारी की घड़ी से। मैं समझता हूँ कि अब ये समय है कि हम बंद करें और बीमारों के लिए प्रार्थना पंक्ति को ले लें। अब क्या आप विश्वास करते हैं कि शैतान ने लोगों और राष्ट्र को दोगला कर दिया है? क्या आप इसका विश्वास करते हैं? निश्चय ही उसने कलीसिया में मिलावट कर दी है। जब तक कि हम मनुष्यों के बने सिद्धांतों में नहीं हो गए, बजाय मसीह के भय और उसके दास। क्या आप देख सकते हैं कि मैं क्यों दोषी ठहराता और हिलाता और जितना हो सकता है शोर मचाता हूँ इन गलत बातों के विरोध में? मैं क्या कर सकता हूँ जबकि वचन इस प्रकार से कहता है और पवित्र आत्मा इसमें होता है। मैं कहता हूँ प्रभु, मैं प्रचार करता हूँ और वे वैसे ही कपड़े पहनते हैं। वे अब भी वही करते हैं जो हमेशा से किया है। जो भी है, प्रचार करो, बस आगे बढ़ते रहो। आपकी आवाज़ देव की हुई है, और न्याय के दिन तब उनके पास कोई बहाना ना होगा, क्योंकि ये आपने सुन लिया है। समझे, ये ठीक बात है, आपने ये सुन लिया है। विश्वास सुनने से होता है, और सुनना जो कलीसिया ने कहा, ये ठीक मालूम नहीं पड़ता। परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, आपको परमेश्वर के विश्वास में वापस ला रहा है। अब जब आप इस प्रातः आते हैं, हम प्रार्थना करना चाहते हैं और हम परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहते हैं कि वो आपको हर चीज को एक और छोड़ने दे। संभव है ये छोटा संदेश आप में मिलावट को दूर कर दे। आपको वापस नम्र परमेश्वर का दास बनाता है कि आगे बढ़कर कहें, मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। उन्होंने अक्सर आश्चर्य किया है, मैं ये कहने जा रहा हूँ, इसे सुनिए। कहते हैं, भाई वर्णम, आपकी सेवकाई की संसार में कहीं भी तुलना नहीं है। ये अलौकिक है, महान लोग, मैं उनके नामों को ले सकता हूँ। ये इस टेप के लिए नहीं था, मुझे उनके साथ जाने के लिए बुलाते हैं। कहा, केवल आपकी सेवका ही एक ऐसी चीज है जो संसार को बचाएगी। ऐसा क्योंकि कहीं और नहीं। वचन पर वापस आओ, केवल परमेश्वर इसे उस नेव पर बना सकता है। तब यदि लोगों को बपतिस्मा देने के लिए मैं इतना गलत हूँ, और जिस प्रकार मैं पवित्र आत्मा की बात करता हूँ और वे बातें जो मैं करता हूँ, तो फिर क्यों परमेश्वर इसका सम्मान करता है, इस प्रकार की चीजें उत्पन्न करता है? समझे, ये क्यों है? मैं ये स्वयं के लिए नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत होगा। मैं ये कहने का यत्न कर रहा हूँ क्योंकि मैं सत्य पर खड़ा हूँ, वचन पर, और केवल वचन पर। ऊपर की ओर बढ़ रहा है और बड़ी चीजें बना रहा है और बड़े बड़े स्थान, इससे परमेश्वर को कोई मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं। वचन के साथ स्थिर रहना, और परमेश्वर उस वचन में कार्य कर रहा है, उस वचन की पुष्टि कर रहा है, उसके साथ बना हुआ है, जीवित परमेश्वर के चिन्ह हमारे मध्य में हैं। क्या आप इस प्रकार के बनना चाहते हैं? आप सारे संसार को अपने में से धो देना चाहते हैं? ओ प्रभु, तुम छोटे बाल को परमेश्वर आपको आशीषित करे। मैं आपके साथ अनंतता बिताने की आशा कर रहा हूँ। मैं आप लोगों के साथ वहाँ सामने अदन की वाटिका में होने की आशा कर रहा हूँ आपके साथ किसी दिन। और जब मैं वहाँ पहुँचूंगा, अधिक समय नहीं हुआ, मुझे एक दर्शन मिला, आपने ये सुना है। मैंने वहाँ देखा और मैंने उन सब लोगों को वहाँ पर देखा, वे वहाँ लाखों में थे। और मैंने कहा, तुम्हारा अर्थ है वो मेरे पास आता है? हाँ, और तब हम तुम्हारे साथ वापस जाते हैं। मैंने कहा, क्या प्रत्येक सेवक को इस प्रकार खड़ा रहना है? हाँ श्रीमान, प्रत्येक सेवक अपनी सेवकाई पर खड़ा होगा अपने भक्त मंडली के साथ। कहा, हाँ श्रीमान, ये स्वर्गदूत जो मुझसे बोल रहा था उसने ये कहा। और मैंने कहा, तो फिर पौलुस को भी खड़ा होना होगा, पौलुस को अपनी भक्त मंडली के साथ खड़ा होना है। मैंने कहा, तो फिर मैं जानता हूँ कि मैं ठीक हूँ, क्योंकि मैंने वचन दर वचन वही प्रचार किया, वही बात जो उसने प्रचार की। और जब वे लाखों चिल्ला उठे, इसी पर हम वहाँ विश्राम कर रहे हैं, आमीन। उस वचन पर, वो वचन कोई मतलब नहीं, वो क्या था? वो वचन। इसलिए मैं लोगों पर जोर देता हूँ, आओ, जैसे कि इस प्रातः उनमें से कुछ फिर बपतिस्मा ले रहे हैं। पौलुस ने किया, पौलुस लोगों से मिला जो बहुत ही आनंदित थे और परमेश्वर की भलाई और बातों से भरे हुए थे, चिल्ला और परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। एक बड़ी सभा, उसने कहा, क्या जब तुमने विश्वास किया पवित्र आत्मा पाया? रेत 19। उन्होंने कहा, हम नहीं जानते कि पवित्र आत्मा कोई होता है। कहा, हम तो बैप्टिस्ट हैं। दूसरे शब्दों में समझे, उनका पास्टर रखवाला बैप्टिस्ट प्रचारक था, बिल्कुल ठीक, एक मत परिवर्तक व्यवस्थापक बैप्टिस्ट। पौलुस ने कहा, क्या तुमने जब से विश्वास किया पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने कहा, हम नहीं जानते कि पवित्र आत्मा भी कुछ होता है। उसने कहा, तो फिर तुम्हारा बपतिस्मा कैसे हुआ? तुमने किसका बपतिस्मा लिया? किस प्रकार का? कैसे? क्या? हमारा यहूना के द्वारा बपतिस्मा हुआ, ये तो अब कार्य नहीं करेगा। कहा, हमने यहूना का बपतिस्मा लिया। उसने कहा, यहूना ने केवल प्रायश्चित का बपतिस्मा दिया। आप उन्हें कितने ही जल के नीचे डुबा दें, देखिए, प्रायश्चित के लिए, पापों से छुटकारे के लिए नहीं, क्योंकि अभी तक बलिदान मारा नहीं गया था। कहा, प्रायश्चित के लिए कहा जा रहा था कि आपको जो आने वाला है उस पर विश्वास करना चाहिए, यानी यीशु मसीह पर। और जब उन्होंने ये सुना, वे सीधे पानी में चले गए और फिर से बपतिस्मा हुआ यीशु मसीह के नाम में, जो कि बाइबल है। और पौलुस ने गलतियों 1:18 में कहा, यदि स्वर्ग से कोई दूत भी, अब सुनिए, मैं क्या हूँ जो इस दोगलेपन के पीछे लगा हुआ हूँ, इससे अलग हो जाओ। यदि कोई स्वर्ग से भी कोई दूत आकर कोई और सुसमाचार प्रचार करे जो मैंने तुम्हें सिखाया है, पौलुस लोगों को दोबारा बपतिस्मा देता है, वो तुम्हारे लिए श्राप हो। प्रचारक और बिशप को छोड़, या पोप या कोई भी पादरी, कोई दूत, चमकदार स्वर्गदूत स्वर्ग से नीचे उतरे और जो उसने कहा उससे विपरीत कुछ कहे, तो वो श्रापित हो। मित्रों, इसके सामने हम कैसे खड़े होने जा रहे हैं? केवल यही नहीं, अब आप यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले सकते हैं और आपका हृदय वैसे ही अश्लील हो सकता है जितना हो, ये आपको नहीं बचाता। परंतु ये एक सही कदम है, आप विश्वास के द्वारा बचाए गए यीशु मसीह में होकर, ये ठीक बात है। परंतु जब आप इस स्थान पर आते हैं और देखते हैं और तब इसे अस्वीकार करते हैं, तब आप वापस जाते हैं। ये छोटी कहानी मैं बंद कर रहा हूँ, मैंने आपको ये पहले भी बताई है, संभव है यहीं पर। एक बार एक पुरोहित ने कहा कि उन्होंने उसे वहाँ बुलाया जहाँ एक व्यक्ति को मशीन गन से मर रहा था, और वो मर रहा था। उसने कहा, क्या आप मसीही हैं? उसने कहा, मैं हुआ करता था, हुआ करता था। उसने कहा, तुमने मसीह को कहाँ छोड़ा? उसने कहा, मुझे याद नहीं। कहा, अच्छा हो कि तुम याद करो, क्योंकि तुम्हारे फेफड़े लहू से भर रहे हैं। कहा, अच्छा हो कि आप जल्दी करें, क्योंकि तुम्हारे फेफड़ों के नीचे तुम्हें गोली लगी है। उसने कहा, मैं जानता हूँ। कहा, तुम मर रहे हो? कहा, हाँ। कहा, और एक समय तुमने मसीह को जाना? जी हाँ। कहा, अब तुम ध्यान से सोचो, क्योंकि तुम्हारे पास नहीं है। कहा, कप्तान, अब तुम्हारे पास थोड़ा समय है, सोचो। कहा, जो लगाकर सोचो कि तुमने मसीह को कहाँ छोड़ा। और जैसे कि उसने संघर्ष किया, सोचने का यत्न करने के लिए संघर्ष कर रहा था, सीधे सीधे उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। कहा, मुझे स्मरण है, मुझे स्मरण है, आपको यही करना है, स्मरण करें। जब आप परमेश्वर के सत्य के विरोध में आते हैं, आप उसे ठीक वहीं छोड़ जाते हैं, आप उसे वहीं छोड़ देंगे, समझे? और आपके लिए इस मार्ग पर जाकर कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि आपको इस पर वापस आना होगा। आप सारे समय चक्करदार मार्ग पर हैं। मैं नहीं कहता कि आप मसीह नहीं हैं, परंतु आप चक्करदार मार्ग पर हैं। वे इजरायली थे, परंतु वे सब बचाए नहीं गए, समझे? ये ठीक बात है, समझे? आप तभी से चक्करदार मार्ग पर हैं, आप इस पर वापस आएं। और पुरोहित ने कहा, मुझे स्मरण करता हूँ। कहा, वहीं से आरंभ करो, आज प्रातः तुम्हें वहीं से आरंभ करना है जहाँ आप उस रेखा से हटे थे। कहा, मुझे सोने के लिए लिटा दो, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे प्राण को रखे, यदि जागने से पहले मैं मर जाता हूँ, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे प्राण को ले ले। और वो मर गया जहाँ उसने मसीह को छोड़ा, वो पालने में था। आप उसे बपतिस्मे पर छोड़ सकते हैं, आप उसे पवित्र आत्मा पर छोड़ सकते हैं, आप उसे कहीं और छोड़ सकते हैं, जहां कहीं भी आपने उसमें उसे छोड़ा। कलीसिया की मिलावटी सामान को ना लें। इस प्रातः उद्धार के लिए आपका एक प्रतिनिधि है। आपको एक पापी नहीं होना है, आपको वो नहीं होना है। आप यदि आप लोग परमेश्वर आपको पापी होने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराता, वो आपको नहीं पकड़ेगा। अब से आगे आपका उत्तरदायित्व होगा। यदि आप इसे अस्वीकार करते हैं, वो आपको उत्तरदायी ठहराने नहीं जा रहा है, क्योंकि ये संभव है कि बीते समय में आपको पानी के बपतिस्मे और पवित्र आत्मा के पाने में अंतर मालूम ना हो, और परमेश्वर के सामर्थ्य संभव है वो आपको इसके लिए उत्तरदायी ना ठहराए। संभव है आपने इसके पहले ना सुना हो, परंतु अब के बाद से आप अच्छी प्रकार से जानते हैं। वचन पर वापस आए, परमेश्वर के पास वापस आए। अब हम प्रार्थना करें और आप इस पर विचार करें जबकि हम प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु, ये जानते हुए कि मैं एक मरणहार हूँ और मैं जल्द ही जाऊंगा, मेरे बहुत दिन अब बीत गए हैं, जल्द ही मैं इस पृथ्वी पर 52 का हो जाऊंगा। प्रभु, मैं ईमानदार बना रहना चाहता हूँ, अंत तक मैं सच्चा रहना चाहता हूँ। समस्त संसार में बहुत सारे राष्ट्र, लोग, रंग, जातियाँ, बहुत से मत्सार देखे और उन्हें देख रहा हूँ। वे उनमें कैसे मिलावट करते हैं और उनके सारे छोटे छोटे विभिन्न मतभेद और घबराहटें, जबकि उन स्थानों में बहुत से सच्चे बालक, बहुत से पुरुष स्त्रियाँ उन स्थानों में हैं, वहाँ उन मिलावटी स्थानों में हैं, जो कि वास्तव में वहाँ नहीं रहना चाहते। वे सोचते हैं वे परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहे हैं। इस प्रातः पिता, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि आज मेरे छोटे से झुंड में संदेह निकाल दें, और उनमें से जो टेपों को सुनेंगे कि आप मनुष्य के बनाए हुए सारे मत्सारों को निकाल देंगे। जैसे यीशु जब वो पहली बार आया, उसने उन्हें वे बातें सिखाते हुए पाया जो कि आरंभ से थी ही नहीं, आरंभ से, जबकि परमेश्वर ने इसे निखालिस और बिना मिलावट के बनाया था, परंतु मनुष्य ने बनाया, परमेश्वर का वचन लेकर उसे प्रभाव रहित कर दिया, मनुष्य के मत्सार को दिखाया। पिता, अब भी ऐसा ही है यीशु के फिर से आने के समीप। जैसे कि दाखलता, यदि दाखलता डाली निकालती है और वो डाली पेंतिकोस्तल डाली है, पवित्र आत्मा से भरी हुई और चिन्ह और अद्भुत कार्य, तो फल भी डाली का अनुकरण करते हैं। यदि वो दाखलता फिर कभी दूसरी डाली निकालती है, तो ये भी उसी प्रकार की डाली होगी। हम ये जानते हैं पिता, अपने ही स्वभाव के द्वारा, परंतु हम जानते हैं कि आप किसी भी फल को दाखलता में जो उससे संबंधित है साँट सकते हैं, और वो दाखलता के द्वारा जीवित रहेगा। और हम जानते हैं कि हम एक संतरे का पेड़ ले सकते हैं और विभिन्न प्रकार के रसेदार 7 या 8 फल उगा सकते हैं। हम उस पर नींबू लगा सकते हैं, हम वो उस पर लग जाएगा क्योंकि वो रसेदार फल है। ये चकोतरा उगाएगा और बहुत सारे और संतरे और बहुत और रसेदार फल, परंतु यदि वो वृक्ष फिर अपनी ही डाल उगाएगा तो ये संतरा ही होगा। प्रभु, ये पहले वाले के समान होगा, और हम विश्वास करते हैं कि अंत के दिनों में एक कलीसिया को होना है जो कि पहली और अंतिम वर्षा को पाएगी। ये इस द्वितीया युग में समस्त संसार में फैल जाएगी। एक कलीसिया होगी जो परमेश्वर के मूल विश्वास पर वापस आएगी। ये वो कलीसिया होगी जिसमें यीशु चलता फिरता होगा, स्वयं को प्रकट कर रहा होगा, राजा की ललकार उसमें होगी। परमेश्वर, आपने कैसे युग के पश्चात युग आरंभ किए, और कैसे उन्होंने उस दाखलता को लेकर और उसमें सांट दिए, और ये मसीहत के नाम के नीचे संपन्न हो गए, परंतु अब भी उन शिक्षाओं को ला रहे हैं जो कि आरंभ में सिखाई ही नहीं गई। ओ परमेश्वर, हम इसके लिए कैसे खेद अनुभव करते हैं। प्रभु, हम नहीं जानते कि क्या करना है, परंतु इस प्रातः मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारे हृदयों में से वो सब निकाल देंगे जो मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ है, उसे लेकर और हमारे हृदयों में परमेश्वर का सत्य वचन रख दें। प्रभु, प्रभु, मैं रोगियों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। मैं कैसे अपने मस्तिष्क में संदेह रख कर वहाँ जा सकता हूँ कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा, तो फिर पिता, मैं स्वयं में एक ढोंगी होऊंगा। परमेश्वर, यदि मेरे हृदय के भीतर जरा भी संदेह हो तो आप मुझे अब इसके लिए क्षमा कर दें। यदि मैंने कोई भी चीज गलत की है या कही है, आप मुझे क्षमा करें। जो सत्य है मुझे उसमें जाने दें। और पिता, मैं जानता हूँ तेरा वचन सत्य है। मैं इसे आपके वचन के आधार पर कहने का यत्न कर रहा हूँ। अपने वंश में जन्म लेने के द्वारा, प्रभु, मैं पहले मिलावटी था, जब तक कि मुझे ये ना मालूम पड़ा कि मेरा मस्तिष्क गड़बड़ है, परंतु फिर भी मैं यहाँ नीचे देख सकता हूँ और वचन देखता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये सत्य है। प्रभु, वहाँ होने की मेरी इच्छा है। मैंने अपना लंगर वहाँ उस चट्टान में डाल रखा है। तूफान मुझे उछाल रहा है और भीतर आस पास, परंतु मेरा लंगर लगा हुआ है ये मसीह में और उसके वचन में। मैं विश्वास करता हूँ कि आपका वचन सत्य है। प्रभु मेरी सहायता करें कि मैं कभी भी एक भी बिंदु पर समझौता ना करूं, परंतु भक्ति प्रेम से निरंतर बना रहूं। मेरे हाथ सब लोगों के गले में रहें, सारी जातियां, सारे रंग, सारे मतसारों, सब नामधारियों के उन्हें चट्टान की ओर खींच रहा हूं। पिता इसे ग्रहण करें, सारे रोगियों और पीड़ितों को चंगा करें, आज पुराने रीति की बेदारी को लोगों में ले आए, उन्हें वास्तविक पेंतेकोस्तल पर वापस ले आए, उन्हें आशीषों पर वापस ले आए, उन्हें वैसे ही वापस ले आए जैसे 33वीं ईस्वी में पेंतेकोस्तल नीचे आया, उन्हें पेंतेकोस्तल की आशीष दें, परमेश्वर की सामर्थ कलीसिया में आने पाए, दिव्य चंगाई होने पाए, कलीसिया को वरदान दें, होने पाए कि अन्य भाषा बोलने वाले हों, भाषाओं का अनुवाद करने वाले भविष्यवाणी के वरदान हों, और सब विभिन्न प्रकार की प्रकटीकरण, बनावटी विश्वास नहीं या विश्वास करने का यत्न या दिखावा, ये वास्तविक हो, मूल वचन के संग आ रहा है, परमेश्वर का वचन जाना जाए, भविष्यवाणी की बातें जो घटित हों। आपने अपने वचन में कहा है, यदि तुम्हारे मध्य में कोई हो जो दावा करे या प्रतीत हो कि एक भविष्यवक्ता है, और जो वो कहता है, और यदि वो घटित नहीं होता तो उसकी मत सुनो, परंतु यदि घटित होता है तो उस भविष्यवक्ता की सुनना, क्योंकि मैं उसके साथ हूँ। परमेश्वर हमें इस प्रकार के भविष्यवक्ता दे, हमें वास्तविक सच्चा सही जो अन्य भाषाओं में बोले, एक वास्तविक जिसका अनुवाद वास्तविक हो, पिता इसे प्रदान करें, बीमार पीड़ितों को चंगा करें और स्वयं को हमारे मध्य में प्रकट कर, क्योंकि हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।
I love him. I love him because he first loved me and purchased my salvation on Calvary.
अब आप सारे मेथोडिस्टो, परमेश्वर के पुत्रों, बैप्टिस्ट परमेश्वर के पुत्रों, आप सब परमेश्वर के पुत्र पुत्रियों, आइए हम अपने हाथों को उठावें और अपनी आँखों को बंद करें और ये उसके लिए गाएं और उसकी आराधना करें। आप उससे प्रेम करते हैं, वे सब जो उससे प्रेम करते हैं कहें यीशु की महिमा हो। हम फिर से कहें यीशु की महिमा हो। ओ, मैं कितना अफ्रीका भाषा में प्रेज दी लॉर्ड, यीशु यीशु वे कहते हैं, प्रेज दी लॉर्ड, डैन की यीशु यीशु धन्यवाद। ओ क्या ही दिन है। हाँ,
how praise, how we thank the good Lord for you.
ओ मैं कैसे कैसे उसकी महिमा करूं, कैसे और तब अच्छे प्रभु का धन्यवाद करूं, आपके लिए उसकी आराधना करें। कठोर काटने वाला संदेश इस प्रकार का, आइए उसकी महिमा करें, उसके आत्मा के मिठास से फिर प्रेम करें।
Precious blood of God's own Son has saved and sanctified a wondrous people for His name, and they are called the bride. Though here neglected and despised, Someday the Lord will bring those chosen ones within the gate, and that's worth everything. All together. When we're inside the gates of pearl, we'll learn a lot of things. We'll have a heart that's made of gold, perhaps a thousand strings. Oh, we'll sing and shout and dance. Hallelujah! The Lamb will dry our tears. We'll have one grand homecoming.
Hallelujah!
The first.
हमें इसके लिए सही स्वर दें, हम इसे फिर से गाएं, क्या आपको ये अच्छा नहीं लगता?
And they are called His bride. Amen. Though you're neglected and despised, one day the Lord will bring His chosen ones within the gate, and that's worth everything.
जरा सोचिए, अब सब एक साथ. आइए जब हम इसे गा रहे हैं तो एक दूसरे से हाथ मिलाएं। आइए अपने हाथ उसकी ओर उठाएं।
Ah.
उसे कभी ना छोड़ूंगा क्योंकि उसने मेरा प्रतिनिधित्व किया है। आमीन। वो मेरा बचाने वाला है क्योंकि वो जो मेरे लिए मरा, मैं अयोग्य हूँ, परंतु क्योंकि उसने मुझे अपनों के समान कर लिया, वो मैं बन गया ताकि वो हो जाऊँ। वो एक पापी बन गया और मेरे पाप ले लिए ताकि मैं परमेश्वर का पुत्र हो जाऊँ। ओ मैं यीशु से कैसा प्रेम करता हूँ। ओ प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप बहन को चंगा करेंगे और उसे अच्छा करेंगे। प्रभु आपकी महिमा के लिए, यीशु के नाम में।
oh, how I love Jesus. Oh, Jesus, I love Jesus.
मुझे एक छोटा अश्वेत परिवार स्मरण है। यहाँ आया करता था एक पुरुष, उसकी पत्नी, एक छोटी लड़की। अब बस मैं इसे नहीं गा सकता, परंतु मैं यत्न कर रहा हूँ। मैं अपने पर पवित्र आत्मा का अनुभव कर रहा हूँ। आमीन।
Suffer and redeem us by his grace.
Oh, ये मुझे अच्छा लगता है। ओह, कितना अमूल्य प्रेम जो पिता ने आदम की गिरी जाति से किया, अपना एकलौता पुत्र दुख उठाने को दिया और हमें अपने अनुग्रह के द्वारा छुड़ाया।
Oh, what precious love that Father had for Adam's fallen race. Gave his only son to suffer and redeem us by his grace.
मैं ये पसंद करता हूँ, क्या आप नहीं? क्या इस विषय में कुछ नहीं है? अब ये संदेश कठोर और सख्त है और काटने वाले। यही परमेश्वर का वचन है जो दोधारी तलवार से अधिक तेज है। परंतु जब ये सब हो जाता है, देखिए महान पवित्र आत्मा यहाँ भवन में उपस्थित है, कहीं से देख रहा है सरदूत। ओ तब ये पूरा होने के पश्चात उसे अपनी बाहों को फैलाते हुए देखते हैं और आशीषें बरसना आरंभ हो जाती हैं। हम अपने हाथ उसकी ओर उठाते हैं और उसकी आराधना मिठास के साथ करते हैं, पवित्र आत्मा की आराधना। क्या ये आपको कुछ करता है? आपको शुद्ध करके आपको नया आरंभ देता है, आपको वचन पर वापस लाता है। अब कितने लोग बीमार हैं? मैं हूँ, चंगा करने को आ रहा हूँ। इस प्रातः ये मेरा चंगे होने की घड़ी है। 1, 2, 3, 4, 5, लगभग 8 या 10 आप में से ठीक है। यदि मेरे छोटे बालक जो यहाँ पर हैं मेरे लिए कुछ करें, क्या आप ये करेंगे? यदि आप सब यहाँ पीछे आ जाएं, अब थोड़ा सा और मैं आपसे निवेदन करने जा रहा हूँ कि यहाँ वेदी के साथ साथ आ जाएं, जबकि प्रार्थना और गाना गा रहे हैं। वे लोग जिनका अभिषेक और प्रार्थना होनी है, भाई नेविल आए और हम इनके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। फिर पानी का बपतिस्मा होगा और तब औपचारिक विसर्जन लगभग 2 या 3 या 10 मिनट में, यदि बहुत हुआ तो मैं समझता हूँ ठीक है। ओ कितना अमूल्य प्रेम पिता ने जो आदम की गिरी जाति से किया, अपना इकलौता पुत्र मरने के लिए दिया और हमें अपने अनुग्रह के द्वारा छुड़ाया।
Oh, what precious love that Father had for Adam's fallen race. His only son to suffer and redeem us by his grace.
यदि कोई जानता हो कि वो छोटा परिवार कहाँ है, मैं चाहता हूँ कि वे आकर इसे मेरे लिए फिर से गाएं। इस बेदारी के चलते ये कहीं वहाँ ब्रॉडवे पर हैं। मैं उनका नाम भूल गया, वो पुरुष और उसकी पत्नी, एक छोटी लड़की।
Oh, what precious love that Father had for Adam's fallen.
इसमें वो कहीं रुकते थे जैसे कि आप करते हैं। ओ कितना अमूल्य प्रेम जो पिता ने आदम की गिरी जाति से किया, अपना इकलौता पुत्र दुख उठाने को दिया और हमें अपने अनुग्रह के द्वारा छुड़ाया। देखिए ये क्या है, आदम की जाति गिर गई थी पूरी रीति से मिलावटी हो गई। वो परमेश्वर के वास्तविक आत्मिक वचन पर अविश्वास करती हुई नीचे आई, लैंगिक पर, सब प्रकार गंदगी, सबसे नीचे के भाग में। और वो कितना अमूल्य प्रेम जो पिता ने आदम की गिरी जाति से किया कि अपना इकलौता दुख उठाने को दिया, जो सबसे नीचा था वहाँ उतरा और हमें छुड़ाकर वचन पर वापस लाया अपने अनुग्रह के द्वारा। और अब इस प्रातः हम उसके अनुग्रह के द्वारा खड़े होते हैं और कहते हैं हम उसके बालक हैं, हमारा इन आशीषों के लिए अधिकार है। यीशु मसीह मरा कि आप सबको चंगा करे, ये ठीक बात है, उसने ये प्रतिज्ञा की है और यहाँ हम जानते हैं कि ये सत्य है। आप में से कितने जानते हैं कि ये सत्य है? तो फिर ये आपकी संपत्ति है, ये आपका है, ये आपका है। तब एक ही चीज है केवल जो आपको इसे पाने से अलग रख सकती है, वो शैतान है, आपको मिलावटी झूठ बताने का यत्न कर रहा है। परमेश्वर ने क्या कहा? वो हमारे अधर्म के कारण घायल किया गया, उसके मार खाने से हम चंगे हुए। क्या आप इसका विश्वास करते हैं कि ये परमेश्वर का वचन है? अब शैतान आपको कुछ भी ना बताने पाए। परमेश्वर के वचन ने कहा समस्त संसार में जाकर और प्राणी को सुसमाचार प्रचार करो। कितनी दूर तक? सारे संसार में। ये अभी तक नहीं पहुंचा है, सारे संसार में। ये कब तक चलेगा? संसार के अंत तक। क्या? सारे संसार में सुसमाचार प्रचार करो। देखो, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, यदि वे सांपों को उठा लें या विष पी लें तो उनकी कोई हानि नहीं होगी, यदि वे बीमारों पर हाथ रखें तो वे चंगे हो जाएंगे। ये वचन है। अब इस पर निर्भर करें, परमेश्वर के प्रत्येक सिद्धांत पर उसी पर निर्भर करें। तब उस स्थान पर पहुंचें और कहें परमेश्वर मैंने प्रायश्चित कर लिया है, मैंने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया है, मैंने लहू को पहचान लिया है, मैंने परमेश्वर के पुत्र को पहचान लिया है, मैंने आपको पहचान लिया है। मेरे पिता, आपने मुझे पवित्र आत्मा से आशीषित किया है। अब शैतान ने मुझ पर बीमारी लाकर मुझे बीमार करने का यत्न कर रहा है, मैं निर्भीक होकर आता हूँ। आमीन। कोई दोष नहीं, मैंने आपके वचन का पालन किया है। मैं यहाँ पर हिस्किया के समान स्थिर हूँ। जब प्रभु ने कहा पता, यशायाह उसे बताने को गया कि वो पलंग से नहीं उठेगा, वो मरने जा रहा है, उसने कहा प्रभु मैं आपके समक्ष सिद्ध हृदय से चलता आया हूँ, मुझे 15 वर्षों की आवश्यकता है। प्रभु ने भविष्यद्वक्ता को बताया वापस जा और उसे बता कि मैंने उसकी सुन ली है, वो जीवित रहेगा। ये ठीक बात है, ये चीजों को बदलता है। आपको इसी प्रकार से आना है, कोई दोष नहीं। यदि कोई दोष है तो आप केवल तो आप हवा में मुक्के चला रहे हैं। आपको जब शुद्ध और स्वच्छ हो जाए तो आना है। मैं इसका विश्वास करता हूँ, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ प्रभु, मैं इसका विश्वास करता हूँ। यदि आप पापी हैं और परमेश्वर को नहीं जानते हैं तो परमेश्वर को यही बताएं, प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूँ, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, परंतु अब मैं आपको अपना हृदय देता हूँ, मैं यहाँ हूँ, मुझे प्रयोग करें। जैसा कि भविष्यद्वक्ता ने मंदिर में कहा मैं यहाँ हूँ प्रभु, मुझे भेज, और स्वर्गदूत ने अंगारा लिया। अब हम कलीसिया में हैं, सुसमाचार सुनाने के क्षेत्र में हम दूसरे प्रकार की सेवा प्रयोग करते हैं। यहाँ हम बाइबल ने ये कहा कलीसिया के लिए, यदि तुम में से कोई बीमार हो तो वो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, उन्हें तेल से अभिषेक करे और उन पर प्रार्थना करे, विश्वास की प्रार्थना से बीमार चंगा हो जाएगा। आप ये जानते हैं, याकूब 5:14। यहाँ भाई नेविल हैं, हमारे पास्टर, एक भले परमेश्वर द्वारा भेजे गए पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति। कितनों ने ध्यान दिया है? भाई नेविल ऊपर बढ़ रहे हैं, क्या आपने ध्यान दिया है? पिछले रविवार भविष्यवाणी करते सुना, पहली बार किसने सोचा था कि एक मेथोडिस्ट प्रचारक इस प्रकार खड़ा होगा, परंतु जब पवित्र आत्मा उन पर आया तो कुछ घटित हुआ, समझे? हाँ, वे यहाँ स्वयं ही आए, समझे? आप ठीक घूम कर सही प्रजनन पर आए हैं, तब आपको आगे बढ़ना है। आप गेहूं के दाने में जीवन डालते हैं और उसे सही अवस्था में रखते हैं तो वो बढ़ेगा, बस उसे छोड़ दें, वो बढ़ेगा। इसी प्रकार से कलीसिया है, यदि आप कभी पलटकर सही बात पर आ जाएं, तो वहीं टिके रहें, बढ़ते रहें, ठीक चमकना और जल और महिमा और हेलुलिया और गाने और चीजें, ये इसे ले आएगा, ये आपको उस स्थान तक ले आएगा जहाँ पहुँच कर आप इसे पाते हैं। विश्वास करने वालों के लिए सब संभव है। अब जब आप पर तेल मले तो मैं आपके ऊपर हाथ रखने जा रहा हूँ। अब पहले मैं सबके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग पंक्ति में रहें, कि एक दूसरे पर हाथ रखें। अब एक दूसरे पर अपने हाथ रखें। मैं ये क्यों कर रहा हूँ? अब बाइबल ने ये कभी नहीं कहा यदि भाई बहन अपने हाथ रखें, कहा विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे यदि वे अपने हाथों को रखेंगे। क्या ये ठीक बात है? वे अपने हाथ रखेंगे, आपके हाथ ठीक वैसे ही है जैसे किसी के भी हाथ हो सके, समझे? ये परमेश्वर का हाथ है जो अर्थ रखता है, और इस प्रकार यदि वे अपने हाथ बीमारों पर रखेंगे वे चंगे हो जाएंगे। अब अपने हाथों को एक दूसरे पर रखें, आइए अपने सिरों को झुकाएं। मैं आप सबको चाहता हूँ कलीसिया वहाँ इन सब के लिए प्रार्थना करें। हमारे ईश्वर के पिता, हम तेरे सामने इन बीमारों को ला रहे हैं। परमेश्वर सोचें, बहुत से यहाँ पर हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि ये सब आपके बालक हैं, आत्मा से जन्म पाए हुए, लहू से धुले हुए, पवित्र आत्मा से भरे हुए आने के लिए तैयार, और शैतान इन्हें नहीं ले सकता इस प्रकार से कि इनसे पाप करवाए। वो इन्हें ले सकता है कि वचन पर संदेह करवाए कि आपका वचन गलत है, और वे आगे बढ़कर अनुकरण करते हैं जैसे कि अक्षर अक्षर है। परंतु तब वो आने का यत्न करता है, उनके शरीर को पीड़ित करता है, क्योंकि वो ये जानता है कि उनका शरीर अब भी पापी है, परंतु उनके प्राण बच गए हैं। इनके शरीर को वापस मिट्टी में जाना है, परंतु उनका प्राण परमेश्वर के पास जाता है, इसलिए वो उस भाग को पीड़ित करता है जो वो कर सकता है। परंतु मैं बहुत आनंदित हूँ कि आपने छुटकारे में इस शरीर को भी सम्मिलित किया है। ये हमारे पुनरुत्थान का बयाना है, हमारे शरीर की चंगाई। और प्रभु अभिलेख में आज लाखों प्राण, लाखों शरीर जो चंगे हुए, इसलिए हम जानते हैं कि आप परमेश्वर हैं। अब वे एक दूसरे पर हाथ रख रहे हैं। प्रभु उनकी ओर देखिए, एक दूसरे में रुचि रखता है, एक दूसरे को जानना चाहता है, भले ही वो किसी कलीसिया का हो, क्या उसकी मान्यता है, वो किस रंग का है या मत्सार का क्या है, वे प्रभु इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ये आपके बालक हैं। इनमें से कुछ मेथोडिस्ट, कुछ बैप्टिस्ट से, कुछ प्रेस्बिटेरियन से, संभव है कुछ कैथोलिक से हो, मैं नहीं जानता, कुछ पेंटिकॉस्टल से हैं, परंतु आप इन्हें इन नामों से नहीं जानते, आप इन्हें अपना जानते हैं। ये लहू से खरीदे हुए हैं, और वे यहाँ पर खड़े हुए वचन का विश्वास कर रहे हैं, और यहाँ वे साहस के साथ आ रहे हैं, और मैं इनके लिए निवेदन कर रहा हूँ आपके एक दास के समान। परमेश्वर, जब ये सेवा पूरी हो तो इस भवन में से एक भी निर्बल व्यक्ति न होने पाए, प्रत्येक चंगा हो जाए। जैसे कि आपके अभिषेक प्राचीन आगे बढ़ते हैं, उस तेल को लगाते हैं, वो थोड़ा सा तेल जो कि उनके माथे पर बहकर आ गया है, ये तेल आत्मा का प्रतीक है। ये हम उन पर लगाते हैं ताकि लोगों को ये बता दें कि ये शुद्ध जैतून का तेल उनके सर पर उसी प्रकार लगाया गया है जैसे कि पवित्र आत्मा आ रहा है। तब जब मैं उन पर हाथ रखता हूँ, मैं स्वयं, तब वो अपनी सीट पर आनंद के साथ जा सकते हैं, पूरे किए गए कार्य के लिए आनंद करें। ये पूरा हो गया, वे चंगे हो गए हैं, वे घर चंगे होकर जाते हैं। प्रभु इसे प्रदान करें, और शोर और महिमा करने की आवाज समस्त नगर के विभिन्न स्थानों में जहाँ ये लोग जाएंगे। आप जानते हैं, एक बार मेरे पेट में पीड़ा थी, परंतु ये चली गई। एक समय मुझे अमुक अमुक था, विशेष बीमारी, परंतु ये समाप्त हो गई। मैंने उस प्रातः संदेश सुना था, फिर से वचन को जमा रहे हैं और वचन पर वापस आ रहे हैं, और अब मैं अच्छा हूँ। इसे ग्रहण करें पिता, मैं इन्हें यीशु मसीह के नाम में आपको समर्पित करता हूँ। अब हमारे झुके हुए सिरों के साथ मैं चाहता हूं कि प्राचीन लोग थोड़ी दूर चले जाएं, कि टेडी, यदि आप में से कुछ ओनली बिलीव गाएं, जैसा कि अब आप कर सकते हैं, और एक बार जो निकल चुका अपने स्थान पर जा बैठे, जैसा कि हम उन पर तेल मलते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम में, स्वर्ग में रहने वाले पिता, जैसे कि मैं अपने हाथ इस महिला पर अभिषेक के तेल के साथ रखता हूँ।